ओम शांति, ओम शांति। आज इस सायंकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है और आप लोग यहाँ दो दिन से हैं और मौसम ने भी बड़ी आपके ऊपर रहमदिली दिखाई है और खूबसूरती दे रहा है कि आप लोग इतनी फिजाओं में घुल जाएं कि ये खुशबू जहाँ जाएं वो लगातार कई दिनों तक आपके यहाँ से निकलती रहे, ऐसा लग रहा है ना। और अभी का जो सत्र है ये पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन मतलब आपस में बातचीत। अब तक आप सिर्फ मंच से सुनते रहे होंगे लेकिन जितना मंच के लोग बोलेंगे उससे ज्यादा आप बोलेंगे, ये सत्र ऐसा है। तो हमें अपनी जो है आज के इस सत्र का भरपूर लाभ लेना है और जो इसके सब्जेक्ट हैं, बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, माने परिवर्तन का आधार मूल्य और आध्यात्मिकता, इस पर हम लोग बहुत अच्छी बातचीत करेंगे क्योंकि परिवारों में इसकी बहुत जरूरत है आज। और हमारे इस सत्र में जो स्टेज पे लोग हैं ये भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान लोग हैं, इनसे भी हम इन सवालों के जानेंगे और आपस में जो हमारी बातचीत होगी उस बातचीत में हम सब्जेक्ट पे केंद्रित होंगे। तो मैं बिना टाइम विलंब किए मैं आग्रह करता हूं, जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं आज के, राजोगिनी शारदा दीदी हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वुमेन विंग की, आप उनको सुन चुके होंगे कल से लेकर आज तक। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पे आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राजोगिनी बी के पुष्पा दीदी हैं, दिल्ली से हैं, चेयरपर्सन हैं जुरिस्ट विंग की और जो दिल्ली में पांडव भवन है हमारा बड़ा ब्रांच है वहां की, उसकी प्रभारी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे आएं। डॉक्टर शशि सिंह हैं, चेयरपर्सन हैं कंसोर्टियम ऑफ वोमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया के, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेघा गोयल हैं, आईपीएस हैं, बिल्कुल यंग हैं और 21 बैच की आईपीएस अफसर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर डॉक्टर आशा वर्मा एकेडमिक काउंसिलर हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में हैदराबाद से आई हैं, मैं आपसे भी विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और मेरा नाम कोमल है, मैं बहनों के बीच में कोमल नाम बहनों जैसा ही है पर मैं भाई हूं, तो हम लोग मिलकर ऐसा बातचीत करेंगे जिससे कि फील ना हो, यहां तो भाई भाई का ही पाठ पक्का होता है, हम लोग भले शरीर से भाई बहन हैं। और मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि हम पहले फूल और गुलदस्ते से स्वागत करें, उससे पहले हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की आस से शुरुआत करेंगे फिर आगे की कार्यवाही चालू करेंगे।
Oh, hey।
आप लोग ताली तो बजाइए, स्वागत हो रहा है, सबका सम्मान स्वागत किया जा रहा है। और मैं तो चाहता था कि आप सबका भी स्वागत हो, लेकिन क्या है कि टाइम हम लोगों का स्वागत में ही निकल जाएगा, लेकिन हमारी भावनाएं आपके साथ हैं कि समझिए स्वागत आपका भी हो रहा है और ये हमारा भी स्वागत हो रहा है। देखिए, और मेरे तरफ से आप सभी का स्वागत है, आप सब स्वीकार कर लीजिएगा इसको। वैसे आप लोगों का स्वागत तो जिस दिन से आए होंगे उस दिन से हो ही रहा होगा, यहाँ का हर व्यक्ति कर रहा होगा, यहाँ की वादियाँ कर रही हैं, यहाँ के भवन कर रहे हैं, यहाँ का माहौल कर रहा है, तो आप हम सब खुश नसीब हैं। मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ पहले से कि ये पैनल डिस्कशन है। हमारे मंचा सिंह जो सम्मानित अतिथि हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ये चूंकि पैनल डिस्कशन है तो हम लोग विद्वत विमर्श आपस में करेंगे और सब्जेक्ट पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, फिर हम बीच बीच में आप सबको भी शामिल करते रहेंगे। हम आपके तरफ से खड़े रहेंगे और इन लोगों को हम कोशिश करेंगे कि बराबर की हमारी सहभागिता हो। ठीक 5:30 हो गए हैं और 7:30 बजे सत्र पूरा करना है और 7:30 बजे में हम लोगों को दोनों लोगों की पूरी भागीदारी निभानी है। और इस सत्र में अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो बिना लाग लपेट के आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछेंगे तो हम जबरदस्ती भी आपसे पूछवाते रहेंगे, आप समझिए, आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। इसलिए आप पूरा एक्टिव रहिए, क्योंकि अभी जो गीत आपने सुना ना, नारी तू है भाग्य विधाता, तो सचमुच है आप, उसको आज जगाने की जरूरत है। और इस सत्र में हम लोग बाकी सत्रों में जगे न जगे लेकिन इसमें जरूर जगेंगे। तो मैं विनम्रतापूर्वक अपना सत्र शुरू कर रहा हूं, और सत्र शुरू करने के पहले जो सब्जेक्ट है परिवर्तन का आधार वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी है, मतलब मूल्य और आध्यात्मिकता है। अब सवाल यह है कि मूल्य और आध्यात्मिकता, ये दोनों चीजें परिवर्तन का आधार क्या है, क्यों इस चीज पे हम लोगों ने फोकस रखा है। आप लोग यहाँ ज्ञान सरोवर में 2 दिन से हैं और यहाँ की खुशबू जो है आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ का जो परिवर्तन का एक माहौल है, आपको घर जैसा लग रहा है या ये लग रहा है कि नहीं हम सम्मेलन में आए हैं? किनको लग रहा है कि हम बाहर के सम्मेलन में आए और किनको लग रहा है कि हम घर में आए हैं? घर में आए कितने लोगों को लग रहा है? अरे कमाल है, आप लोग तो पास हो गए इसमें। और किनको लग रहा है कि हम सम्मेलन में आए हैं? अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा तो कोई नहीं, घर जैसा ही लग रहा है। तो ये घर जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां परिवर्तन है, यहां पे स्वार्थ नहीं है, यहां पे प्रेम है, यहां पे सद्भावना है, यहां पे अपनत्व है, और जहां पे अपनत्व और प्रेम और स्नेह होता है वो अपना घर होता है। इसलिए प्राचीन जमाने में गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, घर को गृहस्थ और आश्रम की उपाधि दी जाती थी, तो ये आश्रम है, बाकी सारा कुछ काम घर जैसा ही है, तो इसलिए फीलिंग हम लोगों को घर जैसे हो रही है। तो ऐसा ही माहौल हमारे घरों में हो जाए, इसीलिए ये सब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन हमको आज इस पर बात करने की जरूरत है कि मूल्य क्या है। बहुत लोग मूल्य की अलग अलग परिभाषा निकालते हैं, और आध्यात्मिकता क्या, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, और परिवर्तन का आधार ये दोनों चीज हम क्यों कहते हैं। परिवर्तन तो बहुत कुछ होता है, फिजिकल होता है, इंटरनल होता है, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि हमारे सामने मंच पे भी लोग बैठे हैं। और मैं आग्रह करता हूं राजयोगिनी शारदा दीदी से, मैंने बायोडाटा सबका देखा है और बायोडाटा इतना लंबा लंबा है कि पढ़ूंगा तो आधा टाइम उसमें चला जाएगा, तो मैं आपकी तरफ से पैरवी कर रहा हूं कि मैं बायोडाटा विनम्रतापूर्वक कम कर देता हूं आप लोगों के सामने, और आप लोग अपने आप में बायोडाटा हैं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट, इनके बोल चाल देख ही रहे हैं, बायोडाटा सब अपने आप में है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता, अगर होगी तो माफी चाहता हूं कि मैं कम कर रहा हूं। शारदा दीदी हैं, आप इन राजयोगिनी हैं, राजयोगिनी का मतलब तो समझ रहे हो ना, कल से जो योग में डूबा हुआ हो, जिनका हर सांस संकल्प योगी हो, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो आप विंग में जिसके तहत आप यहां आए हैं, और हमारे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े लंबे काल से जुड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग जो है व्यक्ति की सबसे बड़ी सुंदरता को निखारता है, वो व्यक्ति के जीवन को तराशता है, और आपने लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी में अपना जीवन दिया है, हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है, आपकी सफेद साड़ी से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में उजाला हो गया है, इसका आकलन आप लोग इनकी बातों से करेंगे, आप लोग कर भी रहे होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के सब्जेक्ट पे अपना बहुमूल्य विचार रखिए। शारदा दीदी,
ओम शांति। हमारे आज के पैनल का विषय मूल्य और स्पिरिचुअलिटी। values. वैल्यूज को अगर मैं डिफाइन करूं तो जैसे एक अनाथ बच्चा चौराहे पर खड़ा है और निस्सहाय है, कोई सहारा कोई आसरा दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार आज एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति समाज में वैल्यूज न होने के कारण, जहां एथिक्स और वैल्यूज और कैरेक्टर तीनों का डिग्रेडेशन हो गया है, तो उसकी मानसिक स्थिति भी इसी प्रकार से हो गई है। वैल्यूज में 5 शब्द हैं हमको वैल्यू को डिफाइन कर देगा। वी स्टैंड्स फॉर वाइसलेस, कोई भी विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत मान शान तेरा मेरा ऊंचा नीचा पोस्ट पोजीशन, ये सब वाइसेस ही है जो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनाने देती। दूसरा है ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस, जबकि हर एक कहता है जो डेस्टिनी में है वो होने ही वाला है और होकर ही रहेगा, तो जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस हो सर्कमस्टेंसेस हो, आई हैव टू एक्सेप्ट, और उन सिचुएशंस में ही सॉल्यूशन है, उसको मुझे उसमें ही ढूंढना है। तीसरा है एल लवफुल एंड लॉफुल। आज लव की जो डेफिनेशन है वो अगर मैं कहूं अपभ्रंश हो गई है। लव निस्वार्थ है, लव में डेडिकेशन है, लव में एक वात्सल्य है, लव एक सीमेंट है जो टूटे हुए रिश्तों को संबंधों को जोड़ने का काम कर लेता है। आज वो निस्वार्थ प्यार व्यक्ति का न स्वयं से है, अतिशयोक्ति है अगर कहूं पति पत्नी का भी निस्वार्थ प्यार नहीं, माँ बाप और बच्चों का भी निस्वार्थ प्यार नहीं, क्योंकि एक कॉर्नर में एक थॉट रहता है जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो बच्चे हमको संभालेंगे। आज के इस परिवार और समाज की इस हालत को आप सभी जानते हैं। चौथा शब्द आता है यू अनबायस्ड माइंड। आज हर व्यक्ति का मन एक दूसरे के लिए बायस्ड है। कोई बहुत दिनों के बाद मेरे पास आता है मिलने के लिए कि आपकी बहुत याद आ रही थी, तुरंत माइंड में थॉट इमर्ज होता है जरूर इसको कोई काम होगा, बिगर काम के ये कभी भी नहीं आता है। तो माइंड पहले से ही बायस्ड हो गया है, वो क्या किस लिए आया है क्या कहना चाहता है वो सुनने से पहले ही अनुमान इमेजिनेशंस मन में चलने लगती है। और लास्ट आता है ई एम्पावर द सेल्फ। तो ये सारी वैल्यूज हम अपने में ऑब्जर्व करें तो हम समझ सकेंगे कि क्या सच में मेरी मॉर्निंग से इवनिंग तक की लाइफ बिहेवियर मेरा एटीट्यूड मेरा व्यवहार मेरे कर्म मेरी दृष्टि वैल्यू बेस्ड है, दूसरा इसके साथ शब्द है स्पिरिचुअलिटी। आपका आज पहले का सेशन राजयोग मेडिटेशन में आत्मा का रहा। आत्मा का कोई धर्म से संबंध नहीं है, लेकिन स्पिरिट विद इन द सेल्फ, जो मेरे अंदर एक शक्ति है, एक एनर्जी है, उसको मुझे पहचानना है। और वो स्पिरिचुअलिटी हमें वो पहचान देती है, थर्ड आई ऑफ विजडम देती है। जिस स्पिरिचुअलिटी में आप देखेंगे तीन आई हैं, टू आईज तो हम सबके पास में है, जिनको स्पेक्ट्स है उनको फोर आईज हो जाती है, लेकिन जो थर्ड आई ऑफ विजडम है वो है ईश्वरीय ज्ञान का तीसरा नेत्र। जिस तीसरे नेत्र से जब हम सारे विश्व पर एक दृष्टि डालते हैं और देखते हैं, तो प्रश्न मन में उठता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो भाईचारे की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति मदद की भावना, सहानुभूति की भावना, उमंग और उत्साह की भावना समय और परिस्थितियों के साथ साथ समाप्त होती जा रही है। लेकिन यहाँ हम उस स्पिरिचुअलिटी से, उस आत्मीयता से, आत्मिक संबंध से, और एक पिता परमात्मा की संतान है, ये हमारा सारा विश्व ही परिवार है, कहने के लिए नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको ले जाती है जो यहां से हम सीखते हैं। तो ये वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी दोनों हमारे सामने है, ऑप्शन थी।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, आपने वैल्यूज की जो है परिभाषा आपने बताई। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसमें से कोई व्यक्ति कोई है ऐसा जो वैल्यूज का मतलब दो लाइन में बताए, कौन बता सकता है बीच में से? माइक है क्या? माइक कोई खड़ा हो गया, दो लाइन में वैल्यूज जो समझ में आता है कि परिवार में इन दो चीजों वैल्यूज की जरूरत बहुत होती है, कौन बता सकता है? आप बताइए, कोई बता सकता है? जी जी, आइए आइए आइए, आ जाए। वैल्यूज, क्योंकि देखिए आज हम लोग खुल के अगर बात नहीं करेंगे तो आपके मन की बात मन में रह जाएगी। आज इस पे पूरा, जैसे मटर छीलते हैं ना, तो तब तो उसका खाते हैं, जब तक आप पूरे छिलका नहीं उतारेंगे तब तक ये अंदर जाएगा नहीं, फिर तो वो हो जाएगा ना कि हम नहा रहे हैं लेकिन प्लास्टिक ओढ़ के नहा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है ना पूरे जो मन के भाव है, वैल्यूज दो शब्दों में बताइएगा कि वैल्यूज क्या है।
ओम शांति, मैं नेपाल से हूँ। वैल्यूज का मतलब मुझे लगता है ये हमारी जो आपने आपने होता है ना, उसको कुछ तरह की इम्पोर्टेंस, लाइक यदि वो नहीं हुआ तो इट्स वेरी डिफिकल्टी फॉर आवर होम लाइफ एंड ऑल ऑक्यूपेशनल एंड एवरीथिंग लाइफ, सो इट्स नेसेसरी फॉर दी पर्सन, दैट इज अ वैल्यू। Like the fathers, they have their own values. Same as the mother have their own values. Same teachers, children, these all have their own values. So I think values is the important and necessary thing in our daily life. I think so. Thank you.
अब मैं पुष्पा दीदी आपसे पहले मैं डॉक्टर शशि सिंह से बुलवाना चाहता हूँ कि जो values पे बात हुई है यहाँ पे, दीदी ने बताया है, सबने बताया, हम जानते तो सब हैं, हमको सबको जरूरत भी है, सबकी अंदर से डिमांड भी है, लेकिन वैल्यूज जो ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है, वैल्यूज ये मिसिंग कहाँ हो रहा है? वैल्यूज कैसे आप इसको मतलब डिग्निफाई करेंगे कि भाई यही वैल्यूज है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज दोनों सब्जेक्ट जो यहाँ पे आज जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भी बताया और दीदी ने भी बहुत अच्छे से कुछ शब्दों में आप रखें, शशि सिंह चेयरपर्सन है, ये एक महिलाओं की बड़ी संस्था है उसकी, और काफी इन्होंने काम भी किया है, बहुत बड़ा बायोडाटा है आपका, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा। जी
ओम शांति
जी,
और धन्यवाद मुझे ये मौका देने का, और मैं अपनी दीदी शिल्पा दीदी और संतोष भाई को भी नमस्कार करना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दो शब्द जो आपने मूल्य के बारे में बताया कि वैल्यू सिस्टम, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये मर्ज इमर्ज का खेल है, क्योंकि वैल्यूज क्या होती थी हम लोग ने मॉरल साइंस में स्कूल में सीखा है कि ये करो ये नहीं करो ये करो, तो ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, हमने अपने आप ही अपनी बाउंड्रीज बना दी हैं, ये कोई नहीं समझाता कि क्या करो क्यों नहीं करो क्या, मतलब क्या वो है। तो इसमें अध्यात्मिकता आई थिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूज को समझना, गुण जो गुण शक्ति ये सब हमारे अंदर ही है, लेकिन मर्ज में जैसे बताते हैं, और अब इतने सालों के बाद जैसे हम लोग अब रैट रेस में आ गए हैं, रैट रेस मतलब हमारी कोई गोल विजन मिशन कुछ नहीं रहा, बस ये है कि होल्ड करते रहो पीयर प्रेशर्स करते, उसमें वैल्यूज कहाँ होती है। हम बच्चों को भी जब बात करते हैं तो वैल्यूज ये हम कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन हम ये समझा नहीं पाते उनको, क्योंकि खुद ही हम नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें अध्यात्मिकता नहीं है। और मैं क्योंकि मेरे प्रोफेशन में डेवलपमेंट सेक्टर में गांव-गांव में जाती हूँ, महिलाओं को सिखाती हूँ, लेकिन हमने भी ये नहीं सोचा कि अध्यात्मिकता को कैसे इसमें मूल गुण में जोड़ा जाए, उस वजह से ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि जब अब मैं पालना ले रही हूँ उससे मुझे मेरी आंखें मतलब एक तरह से खुल गई, बिकॉज एक नया विजन आ गया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ ले गया था, हमें क्यों नहीं सिखाया गया ये सब चीजें। मॉरल साइंस में जरूर एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन ये जो गुण और शक्ति जो हमारे अंदर है वो कहीं लुप्त हो गई, उसको वापस कैसे लाना है, वो आध्यात्मिकता से स्पिरिचुअलिटी जो हमारा सोल कॉन्शियसनेस है, और सोल का जो भोजन हम बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी होता है, और इन दोनों से ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात, इन दोनों से ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। और ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक इज अ मिरेकल, एक मैजिक है, जैसे कैटरपिलर तितली बन जाती है, मिरेकल है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ला सकते हो, और ये जरूरी भी है। लेकिन हम यही ये जो हम लोग की गोष्ठी है इसमें हम लोग समझना चाहते हैं कि मूल, और इसको अगर हम बोलते हैं प्लस मूल प्लस आध्यात्मिकता ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कैसे होगा, कैसे जो हम लोग ये पालना ले रहे हैं ज्ञान, जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसमें एक एक ज्ञान का अगर आप देखें कि किस तरह आप उसको अप्लाई करें अपने माइंड में अपनी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में, तब आप उसको इमर्ज का खेल आएगा कि हम क्या थे पहले, हमारे क्या गुण होते थे, दैवी गुण थे, वो कहाँ चले गए। हम लोग तो अब इस होड़ में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों भागते चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और क्या पैसा क्यों किस लिए, सुख शांति अभी सुबह बताया था, पर ये तो अविनाशी सुख शांति की बात हम लोग वो कर रहे हैं, उसके बाद क्या। तो यहाँ पे यही एक बहुत अहम मुद्दा आता है कि मूल और आध्यात्मिकता को कैसे यूज किया जाए, या कैसे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी का। देखिए इन्होंने अपने मन की बात रखी, और मुझे लगता है कि ये बातें सबके मन में घूम रही होंगी, हम लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात सबको, अब जैसे इन्होंने कहा कि वैल्यूज क्या है, यही नहीं पता है कि वैल्यूज है क्या, जबकि ये हमारे जीवन का प्रथम सिद्धांत है, जिस दिन से हम पैदा जमीन पे होते हैं उस दिन से ही इसमें जीते और मरते हैं, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करें वो अभी तक क्लियर करके नहीं कि उसमें आध्यात्मिकता का क्या रोल है, या मूल्य किसको कहा जाए, जबकि हम रोज हमारी तमन्ना होती है हम उसको पाना चाहते हैं, हर किसी की आकांक्षा होती है कि उसके जीवन में आए, वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे हमारे साथ ऐसा करें, लेकिन ये सरलीकरण करने का जो एक सिस्टम है कि भाई व्यक्ति को जीवन में उतार दिया जाए इस तरीके से, ताकि उसके जीवन में एक अंग बन जाए। मैं पुष्पा दीदी से आग्रह करता हूं कि दीदी आप थोड़ा सा सरल करके बताइए कि मूल्य किसको कहा जाए, या आध्यात्मिकता के साथ कनेक्शन कैसे है। अगर अगर मूल्य आदमी धारण करना चाहता है तो उसमें आध्यात्मिकता का रोल क्या है, और क्या बगैर आध्यात्मिकता के रोल के इसको धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। हमारी पुष्पा दीदी हैं और ये जुरिस्ट विंग जो हमारी है उसकी चेयरपर्सन है, और जो दिल्ली में हमारा बड़ा केंद्र है पांडव भवन करोल बाग में उसकी प्रभारी भी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, काफी ब्रिलियंट हैं, योग के क्षेत्र में इनकी बड़ी उपाधि और ख्याति है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा सरल करके आप इन लोगों को बताएं कि जीवन में इसका महत्व क्या है और मूल्य और आध्यात्मिकता क्या है।
ओम शांति। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने जीवन में वैल्यूज को ला सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसका तो ध्येय ही यही है कि जीवन को मूल्यवान वैल्यू से ही बन सकता है, और वो आध्यात्मिकता से ही संभव है। वैसे भी कहते ही हैं चेंजिंग इज द नीड ऑफ सोसाइटी, परिवर्तन हर एक चाहता है, परंतु आज मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा है कि वो मुझे कौन सा परिवर्तन करना है। मैटेरियलिस्टिक वे से तो आप देख ही रहे हैं कितना परिवर्तन हो रहा है सारे संसार में, समाज में, आपके परिवार में भी, आपके स्वयं में भी। ये पहनना है, ये खाना है, बड़ा लाइफस्टाइल कहां से कहां पहुंच चुका है। परंतु क्या सच में हम अपने आप से झांक कर देखें कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये चेंज हमें कहां ले जा रहा है, और मेरी इंटरनल सेटिस्फेक्शन इससे हो रही है, और समाज किस स्तर पर आता जा रहा है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आपको प्रेम पसंद है या नफरत? आंसर दीजिए। सबको प्रेम पसंद है, सबको। कोई एक तो कह दो नफरत अच्छी है, मैं तो उसी में जीना चाहती हूं। हाँ, एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। तो समझ में आता है ना वैल्यू क्या है। आपको शांति पसंद है अशांति? सबको शांति पसंद है, और यहां तो शांति में ही जी रहे हो। हाँ, घर जाते ही हो सकता है अशांति का वातावरण आपको हिलाने की कोशिश करे, और फिर आप याद करो मैं वहां चार दिन कितनी शांति से थी। वैसी ही लाइफ बन जाए तो कितना अच्छा है। तो वैल्यू समझ में आती है ना। एक छोटा सा मिसाल सुनाती हूं। एक बार एक बहुत समाज की पहुंची हुई पर्सनैलिटी थी, बहुत नामी ग्रामी, हर रीति से संपन्न। उसने एक कंपटीशन रखा, एक अवार्ड रखा, प्राइज रखा, और कहा जो सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया, उसको वो प्राइज मिलेगा। लोग आए, क्योंकि हर एक ये सोच लेता है मैं तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूं, और करते भी हैं नो डाउट। ये नहीं है कि सब कुछ ही खराब है, भले लेवल कलयुग है ना, तमो प्रधानता, हाँ, विशियसनेस बढ़ती जा रही है। तो जब वो सभा बैठी और वो व्यक्ति सामने बैठे, तो उन्होंने हाथ खड़ा कराया, कहा कौन बताएगा मैंने सबसे अच्छा कार्य किया है। तो एक व्यक्ति सामने आया, उसने कहा ऐसा है, मुझे सड़क पर किसी का पर्स मिला और उसमें बहुत सारा पैसा था, और मैंने उसको जैसे तैसे उस व्यक्ति तक वापस पहुंचा दिया। तो उस पर्सनैलिटी ने कहा कि अगर आप वापस नहीं देते तो आप चोर कहलाते। वो तो एकदम सोच में पड़ गया, ये तो कोई बड़ी बात ना हुई। तो उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुप होकर बैठ गया। फिर कहा कोई और बताइए क्या बड़ा काम किया है। आया एक व्यक्ति का एक बच्चा डूब रहा था, तो मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर छलांग लगा के उसको बचाया, निकाल के लाया। तो उस पर्सनैलिटी ने कहा ये तो आपका फर्ज था, आपको आता है करना, आप एक पुरुष हो, आपका एक फर्ज था उस बच्चे को लाना, ये कौन सी बड़ी बात है। वो भी बेचारा संकोच में आ गया। फिर उसने एक चांस और दिया कि कोई बताएगा कि कौन सा बड़ा काम इससे भी। आया वो व्यक्ति और उसने कहा साहब मैं कहीं जा रहा था और दूर दराज एक सुनसान स्थान की तरफ मैं निकला, तो मैंने दूर से देखा कि एक व्यक्ति जो है वो गिरा पड़ा है और बेहोश की स्थिति में है। तो मैं थोड़ा आगे गया तो देखा वो जैसे ही करवट लेगा, नीचे खाई थी उसके बाईं साइड पे, वो गिर जाएगा और वो मर जाएगा शर्तिया, क्योंकि तो खाई बड़ी गहरी है और इसको होश नहीं है और करवट लेते ही ये खाई में गिर जाएगा। कहते जब मैं नजदीक पहुंचा और उसका चेहरा देखा तो वो वही व्यक्ति था जो आज दिन तक मेरे साथ अहित करता आया, दुश्मनी करता आया और इतना तंग परेशान करता आया। तो कहा मेरी अंतरात्मा जागी और मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब दिया कि इसने जो कुछ भी किया परंतु मुझे क्या करना है। और मैंने उसको बाजू से घसीटते हुए, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था, धीरे धीरे घसीटते हुए उस खाई से बहुत दूर सेफ स्थान पर ले गया। तब उस पर्सनैलिटी ने ताली बजाई और कहा कि ये है सबसे बड़ा काम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बड़ा काम कहा गया उसको, भले आप भी ताली बजा सकते हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि उसने अपने अंदर उस दुश्मनी की भावना को रखा ही नहीं। मालूम था, बुद्धि है, समझ है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसके प्रभाव में ना आकर के उसने अपने कर्तव्य को कि मेरा फर्ज कौन सा बनता है इस व्यक्ति प्राणी के प्रति, मुझे वो करना है। ये है वैल्यूज। लेकिन इन वैल्यूज की लाइफ हमारी बन जाए वो आध्यात्मिकता से सहज हो जाता है। स्टडी आप सब करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, फैमिली में माँ बाप भी सिखाते हैं बच्चे लड़ना नहीं किससे, बहुत कुछ, ये मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम लाइफ में वो ला पा रहे हैं? तो यहां पर आप ये अनुभव करेंगे जो ब्रह्मा कुमारी इसकी थ्योरी है कि कैसे आप आध्यात्मिकता से अपनी अंतर आत्मा को इतना एम्पावर कर लेते हैं, शक्तिशाली कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनली कमजोर हो चुके हैं सब, फिजिकली, धन से, अन्य शक्तियां आ चुकी हैं, परंतु अब इसकी जरूरत है। मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगी क्योंकि और भी स्पीकर्स हैं और मेरे को आभास भी हो रहा है थोड़ा सा। तो वैल्यूज लाना जीवन में कोई मुश्किल नहीं, जब आप ही जवाब दे रहे हैं हमें प्रेम पसंद है, शांति पसंद है, इट मीन्स जो पसंद है उस पर कंसंट्रेट करना बड़ा आवश्यक है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने काफी कुछ कोशिश किया आपने बताने की और आपने बताया भी। इसमें से कितने लोग हैं जो तारीफ सुनना पसंद नहीं करते हैं और कितने लोग हैं जिनको तारीफ अच्छी लगती है? तारीफ किनको अच्छी लगती है, हाथ खड़ा करें। अरे खड़ा करें, शर्माइए नहीं, ये तो मंच है ना, भगवान को भी तारीफ अच्छी लगती है, हम तो इंसान हैं, अब तो उठा सकते हैं। तारीफ किनको किनको अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है। अब ये बताइए कि तारीफ किस वजह से होती है, किसी को गाली देने से या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से? भाई अगर किसी ने बगल में अच्छी साड़ी पहन ली और आप तिरछी नजर से उसको देख के कहेंगे कि पता नहीं कहां से उठा के ले आई, उससे तारीफ होगी? और या ये सोच लेंगे आप कि नहीं नहीं अच्छा है, मेहनत करके कमा रही, इससे तारीफ होगी, किससे होगी? तो तारीफ तब होती है जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छा सोचते हैं, यही वैल्यूज है। आपने महाभारत रामायण देखा होगा, महाभारत में लड़ाई के बाद जब आपस में लोग मिलते थे तो भी वो कोई रे और तुम ताम करके नहीं बात करता था, भ्राता श्री, दादा श्री, ज्येष्ठ श्री, वहां लड़ाइयां भी मूल्य के साथ होती थी, जो अच्छाइयां हैं उसको ही मूल्य कहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं मेरी तारीफ हो जाए, मेरे अंदर अच्छाई आ जाए, लोग मुझे पसंद करें। ये पसंदगी का जो खुशबू है ये मूल्य के पुष्प से आती है, इसको ही मूल्य कहते हैं। मना मूल्य का मतलब अगर और सहज कर लें इसको, आप समझ लीजिए गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छे तौर तरीके, सभ्यता का भाव, ये मूल्य हैं। तो ये किसको किसको चाहिए, कौन लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में आ जाए और कौन चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना आए? जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना आए वो हाथ उठाएं। अच्छा, दो माता जी उठा रही हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं या सचमुच आपके जीवन में अच्छा ही नहीं चाहिए? जो वो लास्ट में बॉर्डर पे बहन जी बैठी है, जरा आप आइए इधर, जो आप उठाएंगे बहुत लंबा हाथ, इधर आइए ना, आजिए आगे आ जाइए। नहीं नहीं, आपके वो आप नहीं वो बगल वाले, हाँ वो हरा हरी जो पहनी है बहन जी, हाँ आप आ जाइए, आपने बहुत लंबा हाथ उठाया था। अब इनको अच्छा ही नहीं चाहिए, आप सोचिए इनका भाव। अच्छा, अच्छा ही चाहिए, ओके ओके, मतलब ये लाइन निकल गई उसके बाद आपने हाथ उठाया वहां तक में, इसीलिए मैंने कहा कि आप बॉर्डर पर मत बैठिए, इधर बैठिए, क्योंकि वहां तक जाते जाते थोड़ा टाइम लग जा रहा। तो यही मूल्य है, इसी को मूल्य कहते हैं। अब सवाल यह है कि उसमें आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है भाई? ये तो अच्छा ही है, हम सबको चाहिए, हम सबको अच्छा भी लगता है, हर इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में चीज आ जाए। अब अध्यात्म की क्या जरूरत है, इस पर हम अगले टर्म में आएंगे तो बात करेंगे। हमारे जो अगले वक्ता हैं मेघा गोयल हैं, ये राजस्थान पुलिस की अधिकारी हैं, RPS हैं, और बड़ी सुर्खियों में रहती हैं जो मैं अभी देख पाया हूं। अभी 26 साल की हैं, पहली पोस्टिंग है, ये उप पुलिस अधीक्षक डिप्टी SP हैं भिलवाड़ा में, और जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर RPS क्रॉस कर रहा है या RS क्रॉस कर रहा है या IPS बन रहा है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खास करके महिला होने के नाते काफ़ी चुनौतियां भी समाज में होती हैं। आप DSP हैं और मैं जानता हूं कि जो DSP होता है, कई थाने के लोग उनके अंदर, 5 थाने होंगे मैडम आपके अंदर में, कितने थाने हैं आपके अंदर में? 3 थाने हैं, 3 इनके अंदर थानाधिकारी होंगे, तमाम पुलिस होंगे, कांस्टेबल होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सारी व्यवस्था होगी आपके सामने, तो बहुत चैलेंज है। इसमें मूल्य और अध्यात्म कितना बड़ा रोल अदा करता है और आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं? आप भिलवाड़ा से आई हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पे अपना विचार रखें। लेखा गोयल,
सामान्य मंच, यहां बैठे सभी भाइयों और बहनों, सबको मेरा प्रणाम। सामान्य भाषा में हम मूल्यों की बात करें तो मूल्य क्या है? बड़ों का सम्मान करना मूल्य है, झूठ नहीं बोलना मूल्य है, हिंसा नहीं करना मूल्य है, ईमानदारी का पालन करना, नैतिक रहना मूल्य है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना मूल्य है, नैतिक पथ पर नहीं चलना मूल्य है। साधारण भाषा में हर वो चीज जो हमारे जीवन को आसान और हमारे को सभ्य रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है वो मूल्य है। मूल्य वो है जिनके बिना इंसान का अस्तित्व बेकार है। सुबह भी हमारी यहाँ सभा हुई, उसमें बताया कि कैसे व्यक्तित्व और पशुत्व में क्या अंतर है। जहां मूल्य है, मूल्यों का पालन होगा, व्यक्तित्व वहीं ठहर सकता है। आज के युग में हम देखते हैं कि कितने क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले एक दशक में 10-15 सालों में पूरा एक समाज, एक अलग समाज हम देख पा रहे हैं। मोबाइल फोन का चलन हो गया है, एक यूथ जो है अपने आप में इतना संख्या में तो है ही और इतना मजबूत एक कल्चर उन्होंने डेवलप कर लिया है कि उस ये एक बड़ी चुनौती के सामने आज के माता पिता और हमारे पूरे समाज के सामने है। हम देखते हैं कि एजुकेटेड यूथ, नॉन एजुकेटेड यूथ एक अलग प्रकार के रास्ते पर कई जगह चलते हैं, जैसे बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे दूसरों को परेशान करना, और कुछ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं तो मैं पुलिस जैसी बातें करूंगी, गैंग चलाकर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश करना कि यहां हम पावर में हैं, दूसरों को परेशान करना, ईव टीजिंग करना। बच्चियों को भी हम देखते हैं तो एक जिस रास्ते पर चलती आई थी पढ़ाई करना, प्रेम से रहना, उसमें भी फोन आजकल इतना उभर कर आया है कि हमारा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और यूथ उस तरफ अग्रसर हो रहा है। तो कमी कहाँ है? इंडियन वैल्यू सिस्टम कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता था। हमारे वैल्यूज वही हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप और वैल्यूज को हम अगली पीढ़ी को इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले करते थे। इसके कई कारण हैं, जैसे हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं। पहले संयुक्त परिवार में साथ रहते थे तो फैमिलीज के वैल्यूज इनकलकेट होते रहते थे। आजकल मैं देखती हूँ गांवों में माँ बाप मजदूरी करते हैं और उन्हें ये ध्यान नहीं रहता बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे घर वापस आता है, किन लोगों के साथ में रहता है। तो ऐसे में असंभव है अपने संस्कार उन तक पहुंचाना। तो वैल्यू सिस्टम इसीलिए आज कहीं ना कहीं डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसमें मैं स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में देखती हूँ। जैसे हमारे कस्बे में, गोविंदगढ़ जिला अलवर की रहने वाली हूँ, हमारी मिथिलेश दीदी वहां पर ओम शांति का संचालन करती हैं। तो मैं इनके चरित्र को देखती हूँ कि एक होता है कि केवल अपनी चीजों का प्रचार प्रसार करना और दूसरा होता है उस पर खुद भी खरे उतरना। मैंने इनके चेहरे पर कभी तनाव की अनुभूति नहीं देखी। कितनी ही विकट समस्या आए, जल्दबाजी हो, कोई अपने नाराजगी व्यक्त करता है, एक समरसता, एक ठहराव हमेशा रहता है। और जब भी हमारे वहां के लोग किसी टेंशन में रहते हैं तो जाहिर सी चीज है ओम शांति के उससे जुड़ते हैं, तो मैं देखती हूँ कि एक उनके मनोस्थिति में परिवर्तन आता है जो कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसको भी मजबूत करने में एक रोल प्ले कर रहा है। तो जरूर जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर अगर हम फोकस करें, उस चीज को अपने बच्चों से भी जोड़ें, तो ये वैल्यू सिस्टम हमारा जरूर मजबूत होगा। थैंक यू।
देखिए, पुलिस की खनक दिखाई दे रही ना इनके अंदर, आप लोगों को महसूस हुआ ना कि पुलिस अफसर की खनक है, वो गैंग चलाना है और ना बोल सकती है, आज आपके लिए छूट है बोलने के लिए यहाँ पे। अब आप समझिए कि इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कही है, क्योंकि पुलिस अफसर होने के नाते इनके सामने बदमाश भी आते हैं, इनके सामने अच्छे लोग भी आते हैं, और इनको देख के कानून के तौर पे काम करना होता है। आज मैंने एक खबर पढ़ी, एक महिला ने अपने पति को जहर दे दिया। जहर क्यों दिया भाई? उस पति ने उसको कहा, अपने राजस्थान की खबर है, अभी आज की है, माना पुलिस ने खुलासा किया उसका, उसको दर्द हो रहा था तो उस अपनी पत्नी से कहा कि मुझे दवा दे दो, तो उसने जहर दे दिया दवा घोल के। अब वो तड़पता रहा, वो कीटनाशक दवा होगी, उसने पिला दिया उसको। दो तीन दिन रहा अस्पताल में गया, फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो जहर दे दिया गया, फिर बड़े अस्पताल में जा, उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस को यह पता नहीं पड़ रहा था कि इसको जहर दिया किसने। अब पत्नी पे तो आदमी भरोसा तो ऐसा तो जल्दी करेगा नहीं। फिर बाद में पुलिस ने पूछा कि उसकी जब पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, जहर मैंने दे दिया है। तो जहर क्यों दिया है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी बीए, वो पढ़ा लिखा था दसवीं, और आटा साटा चलता है राजस्थान में। आटा साटा का मतलब ये होता है कि अगर एक लड़की के घर में दूसरे के यहाँ शादी हो रही है तो ये उसमें होता है कि उसके घर की लड़की उसके यहाँ आएगी तो दोनों की शादी होगी, चाहे वो बचपन में वो पांचवीं में पढ़ती हो, सातवीं में पढ़ती हो, या किसी भी तरह की हो, उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो एजुकेशन क्या है। तो बोली कि उसके तहत हमारी शादी हो गई थी और अगर मैं इसको छोड़ के चली जाती तो राजस्थान में बहुत कुरीति है, यहाँ पे भारी जुर्माना लगाया जाता, पंचायतें बैठती, मारपीट होती, और उसकी बहन की भी जो है उसकी शादी टूट जाती। तो उसने कहा कि इससे शॉर्ट कट रास्ता अपनाओ कि दवा मांग रहा है जहर दे दो, छुटकारा हो जाएगा, अब तो जेल जाएगी। अब इसमें ये बताइए, अब यहां पे डिफाइन करना आपको है कि वो चाहती थी कि मेरे साथ अन्याय हो गया, कि बचपन में जबरदस्ती में जो शादी मैंने मेरे बिना मर्जी के कर दी गई और मैं इसको झेल रही हूं। अब इससे बचने का उपाय यह है कि इसको जहर दे दो। तो अब यहां बताइए कि वो अपने अधिकारों के लिए मूल्य के साथ लड़ रही है या गलत काम कर रही है, इसमें कौन बताएगा? खड़ा होकर कोई बताए? घर घर की कहानी है ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। वो अपनी जगह ये कह रही है कि मैं ठीक हूं अपनी जगह, क्योंकि मेरी बचपन में बिना मेरे मर्जी के शादी जबरदस्ती कर दी गई, मैं बीए तक पढ़ी थी, वो दसवीं तक पढ़ा था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं अपने कर्तव्यों के साथ पालन कर रही हूं। उसने अपने पति को जहर दे दिया। अब इसमें बताइए कि वो मूल्य के साथ खड़ी है या गलत कर रही है, कौन बताएगा? हाँ बताइए, आइए यहां डिफाइन होगा। देखिए ये जो घर घर की कहानी है, इस पर ही हमको बात करनी है, फिर हम अगले वक्ता के पास जाएंगे। अगर आपके सामने ऐसी नौबत आ जाए तो आप क्या करेंगे वो बताओ।
ओम शांति। मुझे लगता है कि इस वैल्यूज में तो नहीं है, वो मूल के साथ नहीं है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि कोई कुरीति है तो उसको कोई दूसरा रास्ता उस चीज के लिए अपनाना चाहिए था, उस कुरूति के अगेंस्ट उसको खड़ा होना चाहिए था, ना कि वो किसी का जीवन ले ले। कि जब हमको किसी को जीवन देने का हमारे पास पावर नहीं है तो हमें जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर। और कोई इसमें और किसी के मन में? हाँ आ जाइए, अरे फटाफट आइए। माइक के सामने है, आपकी आवाज इतनी नहीं आ पाएगी उधर से। हाँ माइक लगाइए। हाँ
ओम शांति। मुझे लगता है कि उसने गलत किया, क्योंकि जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं और आपसे ही हमने ये कल सुना भी है और सीखा भी है कि हमारे को दो तरह हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उनको अगर स्पिरिचुअली बचपन से ही ब्रिंगिंग अप ऐसे की गई होती कि जो है एक्सेप्ट किया, वो तो इंटेलिजेंट थी ना, और अगर उसके पास उनमें क्वालिटी ढूंढती कि उसमें कुछ क्वालिटी होती और वो बहुत अच्छे से चल सकता था। हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर जो हो गया है तो उसके वो तो इंटेलिजेंट थी ना, उसको मिलके चलाना चाहिए था। मुझे लगता है
यहाँ तो अभी बारिश, ज्ञान की बारिश का असर है, तो ऐसे बोली, इसके पहले आप होती तो क्या सोचती?
तब भी मैं यही सोचती अगर हाँ, ये ब्रिंगिंग अप पे ही होता है। मुझे लगता है कि जो जिस तरह से हमारी परवरिश होती है, शायद आप लोगों ने मदर्स को बुलाया ही इसलिए और कि आप लोग जो हमें समझाएं वो हम स्प्रेड करें कि हमें, हम यहाँ से यहाँ पे तो हमें सभी ऐसे एक्सेप्टेंस वाले मिल रहे हैं, बट हमारे पास बाहर जाके बहुत चैलेंजेस होते हैं लाइफ में।
थैंक यू। इसमें कोई ऐसा है जिसको लगता है कि उसने सही किया? कोई हाथ खड़ा करे अगर कोई ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है कि नहीं, ऐसी स्थितियों जो किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। चलो ये तो हस्बैंड वाइफ का हो गया, अगर आपने देवरानी जेठानी में अगर ऐसा हो गया कि उसने अपने बच्चे को ज्यादा आज दूध दे दिया है, हमारे हिस्से का भी दे दिया है, मुझे उसको अगली कल का जो है ना दूध छुपा के रख देना है ताकि उसका बच्चा न पिए, हम कम से कम ले लें, ये भी उसी में आता है। तो ये कोई है इसमें जो समझ रहा है कि नहीं उसने सही किया? कोई है? चलो कम से कम आप सब बहुत अच्छे हैं कि आप लोग जाके एक नया समाज बनाएंगे, अपने लिए तालियां। हाँ नहीं, आप किसने खड़ा कर रहे हैं? अच्छा किया उसने। अरे इधर आ जाइए, नहीं इधर, इधर आइए। जी माइक लीजिए।
ओम शांति। उसने एक्चुअल में जो किया एंड में, उससे भी उसको कोई फायदा तो हुआ नहीं, बट वो ये चीज कर सकती थी कि चीजें खत्म करने से वो आवाज उठा लेती जो औरों के साथ गलत ना हो। जैसे उसको लगा कि मेरी बचपन में शादी हुई है, जैसे भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज में, लाइफ में बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो वो समाज के सामने खड़े होके बात अपनी रख सकती थी इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इमोरल थिंग, क्योंकि खत्म तो अभी भी चीजें हो गई है ना। तो
उससे तो मुक्ति मिली गई ना?
नहीं, मुक्ति नहीं मिली ना। मुक्ति कहाँ मिली? मतलब जिस जो मुक्ति के लिए घूम रही है वो लेडी, वो तो फंस गई है और ज्यादा। वो बिल्कुल फंस गई है, वो आवाज उठा के और लोगों के अपना चलो जो हो गया, बट हो सकता है सोसाइटी को थोड़ा सा चीजें दिखा के कि
थैंक यू
ये चीज गलत है।
मैंने कहा कि दीदी ने आज कहा था कि तीसरी आंख से देखना है, तो आज तीसरी आंख आप लोगों की खुल गई है, यहाँ तक आते आते मैं देख रहा हूँ सबकी तीसरी आंख खुली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वक्ता अगली वक्ता है
एक्सक्यूज मी
जी, अच्छा अभी हाँ,
मेरा नाम संध्या गुप्ता एडवोकेट है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। ज्यादातर मर्डर के रेप केसेस, बच्चियों के साथ आजकल बहुत रेप होते हैं, या मैट्रिमोनियल केसेस बहुत आते हैं। आए दिन में अगर 20 केस हम अटेंड कर रहे हैं तो उसमें से 10 केस माताओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस घरों में हो रहा है, उससे रिलेटेड होते हैं हमारे पास। जो लास्ट में उसने रास्ता अपनाया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमारे कानून के अंदर इतने सारे रेमेडीज दी हुई है, वो कंप्लेन कर सकती है। जैसा कि मेरी DCP साहब यहाँ आई हुई है, DCP साहब भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि अगर वो कंप्लेन करती तो पुलिस उसका पूरा साथ ही देती। पढ़ी लिखी होते हुए भी उसने अपना जीवन नर्क बना लिया, क्योंकि आगे का जीवन उसका लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, जेल में कटने वाला है। तो शायद वो आवाज उठाती तो अपने साथ साथ बहुत सारी महिलाओं का साथ दे सकती थी, और उनके लिए आगे आने वाली कोई महिला ऐसा कोई काम करे कि उसे अपने पति को जहर देना पड़े, उससे उसे बचा सकती थी। थैंक यू, ओम शांति।
बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच से जो हमारी पुलिस अधिकारी है जाने के लिए कह रहे हैं कि ये डिबेट जो है मैं उठना तो नहीं चाहती, उनको कोई अर्जेंसी आई है। तो मैं आग्रह करूंगा सविता दीदी से, अगर इधर कहीं हैं तो, कि आपको हम लोग इजाजत तो नहीं दे रहे हैं आपको, बट अगर आपको अर्जेंसी है तो आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि आपका दायित्व तो ऐसा है।
लीगल रेमेडी कितनी फास्ट होती है, देखिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो यहाँ पे क्या है, और आध्यात्मिकता की बात ही नहीं है यहाँ पे, तो स्पर ऑफ द मोमेंट उसने डिसीजन लिया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे ये लॉ मतलब क्या कहता है कि कितनी जल्दी फास्ट वो होता, कि अगर वो कंप्लेन कर दे कि इमिजिएट उसको रेमेडी मिल जाती। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्यों लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, बिकॉज हमारा जुडिशियल सिस्टम डिले करता है, तो उसको आंसर नहीं मिला होगा या उसने सोचा
नहीं। देखिए ये तो केवल महिला के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वह पति जो केवल दूसरे के चक्कर में अपनी पत्नी की 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है, ये दोनों के लिए अलाउ है कानून के तौर पे, तो ठीक है। लेकिन अगर ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, जो मूल्य की हमारी बात हो रही है उससे कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी और मूल्य, ये दो ही ऐसे अस्त्र हैं जो इन चीजों को रोक सकते हैं। ना कानून रोक सकता है, ना पुलिस, ना प्रशासन, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके पास कानून बहुत सख्त कर दिए गए थे, उसके बाद भी केस में कमी नहीं आई, केस बढ़ी। तो जो अध्यात्म और मूल्य की बात हो रही है उससे इसको मतलब तौलने की जरूरत है, इस पे अपना डिस्कशन हो रहा। और मैं हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर आशा वर्मा जी हैं, एकेडमिक काउंसलर हैं, मार्केटिंग एजुकेटिव हैदराबाद से आई हैं, आपका भी बहुत लंबा चौड़ा बायोडाटा है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं विनम्रतापूर्वक कि आज जो ये सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है, जो बातें सामने आ रही है, इस पे अपने आप विचार रखें।
नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हैदराबादी हिंदी है थोड़ा, और तो माफ कीजिएगा अगर मेरा हिंदी ठीक नहीं है। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। 40 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और सब तरह की ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे व्यू में पहले तो बच्चों को वो वैल्यूज हम नहीं सिखा रहे हैं बचपन से, जो पेरेंट्स या स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखानी है। पहले तो फैमिली, मेरे बचपन में मुझे याद है मेरे बड़ी माँ, मेरी माँ, मेरे पिताजी कैसे सबको आदर देना है, सबको, मैंने मेरी बड़ी माँ को भी मेरे माँ जैसा आदर देना है, और जब भी हमारे रिजल्ट्स आते थे उनको भी इन्फॉर्म करना, जैसे कि उतना रिस्पेक्ट देना था उनको। और जो भी हम अच्छा काम करते थे उनके पांव छू के ही हम पूरा करते थे। ये सब जो है आजकल के बच्चों में हम नहीं देखते हैं, और रीडिंग भी कम हो गया है। कोई हम तो अमर चित्रकथा ऐसे स्टोरीज पढ़ते थे, चंद्रमामा स्टोरीज पढ़ते थे, और इससे जो वैल्यूज आते थे ना, अनकॉन्शियसली वी यूज टू लर्न, इतने वैल्यूज हमको मालूम होता था। बट आजकल बच्चे ये टाइप की बुक्स पढ़ते नहीं है। मेरा कोशिश कभी भी है कि उन लोगों को बुक्स दिलाएं, अच्छे अच्छे बुक्स दें, मेरे नेबर्स के बच्चों को या कोई भी बुक्स देती रहती हूँ, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। और पेरेंट्स भी, और स्कूल में देर इज नो मॉरल साइंस क्लास। मैं जो कॉन्वेंट में पढ़ी थी तो मॉरल साइंस क्लास होता था, तो वी यूज़ टू लर्न सम वैल्यूज, यू नो, इवन दो वी डिडंट लाइक इट देन, बट वी लर्न सो मच इन द मॉरल साइंस क्लासेस। बट आजकल वो क्लास तो नहीं है। तो कभी योगा क्लास है या ऐसा कुछ स्कूल्स में आजकल इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे शायद दे आर लर्निंग समथिंग। मेरे नेबर्स के बच्चों को मैं ये रामकृष्णा मठ के चिल्ड्रंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं एनकरेज करती रहती हूँ, बट आई फाइंड दैट देयर इज नो, दे डोंट नो व्हाट आर द वैल्यूज। और रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, यू नो, बेसिक रिस्पेक्ट वी आर टॉकिंग ऑफ। तो सब जगह हाय आंटी, हाय आंटी, ये बड़ों को, छोटों को, सबको हाय। इंग्लिश में जो है हाय इज सेड ओनली टू पीपल ऑफ योर ओन एज एंड योर ओन लेवल। यू डोंट से हाय टू पीपल हु आर ओल्डर देन यू, यू डोंट से हाय टू सुपीरियर्स। हाय इज अ वेरी कैजुअल ग्रीटिंग एंड यू से इट ओनली अपने एज के लोगों से, अपने फ्रेंड्स के, अपने लेवल के लिए। बट आजकल सब लोग हाय ही बोलते हैं, व्हाट्सएप में भी जो इंट्रोडक्शन आता है हाय होता है। तो हेलो इज अ बेटर ग्रीटिंग देन इवन हाय। हेलो सर, हेलो मैडम, हेलो आंटी, या फिर नमस्ते मैं बोलती हूँ, आप नमस्ते बोलिए। हाँ, उसमें वी आर शोइंग रिस्पेक्ट। तो ये बेसिक चीजें जो है ना, नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक पेरेंट्स शुड, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दिस। एंड स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल में स्पेशली, ये सब शुरू करनी है, टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। इवन इफ देयर इज नो मॉरल साइंस क्लास, एटलीस्ट सम स्टोरीज कैन बी टोल्ड विच विल हैव मॉरल लेसन्स टू लर्न फ्रॉम। तो ये फंडामेंटल बेसिक वैल्यूज वी शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल ऑफ अस शुड डू दिस, एंड स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये सोचने की बात है। और ऐसी तरह के बुक्स भी, आजकल रीडिंग बहुत कम हो गया है, कोई बुक्स ही नहीं पढ़ते हैं, पूरा विजुअल मीडियम हो गया है ना, फोन देखना या टीवी देखना। बच्चे घर आते हैं सीधा टीवी के सामने, नहीं तो सेलफोन ही है। एक साल दो साल के बच्चे सेलफोन नहीं दिए तो बस क्या, दे थ्रो अ टैंट्रम एंड मेक सच अ फस। बट हाँ, एंड दैट्स, इट डजंट टीच देम एनीथिंग रियली, यू नो। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइट फ्रॉम 5 years old, यू नो। यू, मुझे याद है मेरी बड़ी माँ इतनी कहानियां सुनाती थी कि ये हीरो के बारे में, ये गॉड के बारे में, और हम लोग सुनते थे और उसमें से वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। बट वी डोंट हैव दैट हैपनिंग नाउ। सेलफोन ही हो गया, टीवी हो गया, सब फिल्म्स के बारे में चर्चा होती है, डांसेस फिल्म्स के बारे में है। आई फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एक्चुअली। तो मैं समझती हूँ एजुकेशन इसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब पेरेंट्स को कि प्लीज एटलीस्ट दे शुड ज्वाइन समथिंग लाइक रामकृष्णा मठ में, ये जो आई एम सो श्योर देर आर अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, चिल्ड्रंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, दैट काइंड ऑफ थिंग विल हेल्प देम अ लॉट। और पेरेंट्स मैंने सुना, मैंने अटेंड किया है, बहुत अप्रिशिएटिव है कि बच्चे उनके बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं आफ्टर अटेंडिंग दैट कोर्स. सो आई वुड सजेस्ट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग डन बी डन राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैं एक सवाल आपके भाषण से मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मूल्य की बात आती है तो सिर्फ हम बच्चों पे फोकस क्यों करते हैं? क्या यह मूल्य सिर्फ बच्चों के लिए है? कितने लोग समझते हैं कि यह मूल्य सिर्फ बच्चों के लिए है? क्या वह मूल्य हमारे लिए नहीं है? क्या वह मूल्य क्या 70 साल के व्यक्ति के लिए नहीं है? क्या मूल्य 36 साल के व्यक्ति के लिए नहीं है? क्या मूल्य 20 साल के बच्चे के लिए नहीं है? क्या यह मूल्य केवल बच्चों पर फोकस हम क्यों रखते हैं? आपको यह आपको जाहिर होगा कि बच्चे माँ बाप से सीखते हैं. ज्यादातर बच्चे जो है आज माँ बाप से सीख रहे हैं कि माँ बाप कैसे हैं. आजकल फैमिली की परिभाषा बदल गई है. पहले माँ बाप पूरा परिवार इकट्ठा होता था तो बच्चे लिहाज करते थे कि हमारे चाचा भी साथ हैं, चाची भी साथ हैं, भैया भी साथ हैं, भाभी भी साथ हैं. आजकल फैमिली की परिभाषा यह हो गई कि मैं, बीबी और मेरा बच्चा. अगर माँ बाप साथ में हैं तो ज्वाइंट हो गए. तो अगर हम ये परिभाषा खुद बना रहे हैं कि माँ बाप को साथ रखने में, भाई बहन को साथ रखने में ज्वाइंट हो गए, मतलब वो अलग से जुड़ गए जो हमारी जड़ है, तो केवल हमें क्या, आप ये बताइए, आप लोगों में से मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह मूल्य केवल बच्चों के लिए है या हमारे हमसे भी शुरू होना चाहिए? कितने लोग इसमें से, कौन इस पर बात करेगा? जी आइए आइए आइए.
ओम शांति. हम नेपाल से आए हैं. रईस पे जो आपने क्वेश्चन हमसे रखा है उसमें थोड़ा हम इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि जो मॉरल होता है, जो मूल्य होती है, वो सबके लिए होती है, चाहे वो बूढ़े हो और बच्चे हो. लेकिन क्या होता है कि जो चेंज होना है, बिहेवियर चेंज जो होना है ना, वो बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी है ना. तो उनको हम जैसा से पहले स्कूल में जो मैम ने कहा है ना, लाइक हमारी छोटी 6 वर्ष की बेटी है, वो हमसे कभी कभी हम बोलते हैं कि बेटा ये जो कोई मिस्टेक होती है ना स्पेलिंग, तो हम बोलते हैं कि बेटा ये मिस्टेक है, तो वो बोलती है नहीं, हमारे मैम ने इसमें टिक लगाया तो ये सही है. तो इसका मतलब क्या है, स्कूल में अगर हम अच्छी शिक्षा दे और उनको जो मॉरल साइंस, हमारे नेपाल में भी अभी नहीं है ये कोर्स, क्योंकि पहले थी, हमारे टाइम में वो हमने पढ़ने नहीं पाए, हमारे बच्चों ने भी नहीं पाए. तो हम क्या चाहते हैं कि स्कूल से अगर ये मॉरल साइंस और जो सीख रहे हैं वो में सिखाई जाए, तो शायद वो अच्छे बच्चे बन के वो एडल्टहुड में, एडोलेसेंस होते हुए एडल्टहुड और उनके होल लाइफ में इतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी. तो हमने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में किया था, तो तब हम मेंटल हेल्थ के उसमें ही थेसिस किए थे जो एडोलेसेंस बच्चे थे. उसमें हमने सबसे ज्यादा क्या देखा, जो हाई लेवल और जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो मिडिल क्लास जो है वो फैमिली को, बच्चे को टाइम देते हैं ना, इसलिए उनमें कम प्रॉब्लम है. सो इसलिए
मैं आप ही से सवाल पूछूंगा. दूसरे थे ना, आप आइए. हाँ जी,
हाँ, थैंक यू. ओम शांति. कल या सुबह में एक सब्जेक्ट हुआ था कि पेरेंट्स बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ पहले से उनको संस्कार देना चाहिए. तो मुझे लगता है कि या तो ये संस्कृति अच्छी थी कि जहां विमेन सिर्फ बच्चों की ही केयर करे और बाकी कार्यों के लिए घर छोड़कर न जाए, जैसे कि रशिया में 5 साल लीव मिलती है, इस पर एक स्पीकर ने बात की थी. या तो ये संभव है, या तो फिर ऐसे संभव है कि अगर किसी को चांस लेना है और बच्चे को पैदा करना है, जन्म देना है, तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन बने जो एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट लीड करे और वो वैल्यू एजुकेशन, गर्भ संस्कार सब अपना आत्मसात करने के बाद वो पेरेंट बने, तभी ये कुछ जड़ से हट सकता.
थैंक यू. आप.
ओम शांति. सबको ओम शांति. अभी इस चर्चा में मूल्य का बात हो रहा है, तो
अभी सर पूछे, बच्चों को ही मूल्य जरूरत है, बड़ों को मूल्य की जरूरत नहीं है क्या? मूल्य मतलब क्या? अच्छे संस्कार? क्या है मूल्य? मूल्य मतलब क्या? अच्छे शिष्टाचार? क्या होता है मूल्य? अगर हर घर में मूल्यवान है तो वृद्धाश्रम क्यों बन रहे? क्यों बन रहा है वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम ही नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्या हम बच्चों को ही सिखाए मूल्य क्या है? मैं बोलती हूं अपने बड़ों के अंदर ही एक मूल्य नहीं है। ओम शांति आते हैं, एक्चुअल में कर्नाटक से हूं।
पर लग नहीं रही है कर्नाटक से, आपकी हिंदी बड़ी तगड़ी है।
सॉरी मैं ये बोलती हूं बच्चों को तो हम शिष्टाचार, अच्छे संस्कार, मूल्य सिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट आज राजयोग में हमने सीखा मैं कौन हूं, हु आई एम। तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मूल्य बड़ों के अंदर शिष्टाचार, अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है। अगर बड़ों के अंदर शिष्टाचार हो, एक अच्छे संस्कार हो, अच्छे मूल्यवान हो, मैं कौन हूं इसका मतलब मुझे समझ में आया, तो कोई दुनिया में वृद्धाश्रम नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। इन्होंने जो बात कही है और इसके पहले जो कह के गई हैं, हमारी दीदी हैं, इन लोगों से मैं जानूंगा। मैं अभी टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं बाद में करूंगा। दीदी आप बताइए कि जैसे इन लोगों ने कहा कि बच्चों पे होनी चाहिए, उन्होंने अभी कह के गई हैं कि बड़ों पे नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम की जो बात उन्होंने कही, वृद्धाश्रम में सामान्य तौर पे बड़े लोगों के निग्लेशन के बाद ही माँ बाप जाते हैं वृद्धाश्रम में, बच्चे नहीं भेजते हैं। छोटे बच्चे को तो हम संभाल के रखते हैं कि झूठ ना बोले, कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, दारू न पिए, नशा न करे। लेकिन जो वृद्धा आश्रम की जो प्रथा शुरू हो रही है वो एडल्ट होने के बाद हो रही है, जब हमारी शादी हो जाती है, जब हम परवरिश नहीं करते हैं। इसके बारे में आप जरा बताइए कि इसको कैसे आप करेंगे मूल्य के साथ।
बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों में संस्कार की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वृद्धाश्रम की बात कर रहे हैं। माता पिता को वृद्धाश्रम में किसने भेजा? किसने भेजा बताइए? माता पिता को वृद्धाश्रम में किसने भेजा? जी वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने मां बाप को भेजा। अब उनका जो बच्चा है वो अपने मां बाप से क्या सीखा? क्या सीखा? कल को वो भी अपने मां बाप को ऐसे ही वृद्धाश्रम में भेजेगा। पहले समय में कुछ बातें निकली, मां बाप, नाना नानी, दादा दादी बच्चों को स्टोरी सुनाया करती थी और वो स्टोरी सुन करके बहुत बड़े बड़े महान आत्माओं ने इस विश्व के अंदर एक रोल मॉडल का काम किया। चाहे शिवाजी को लें, महात्मा गांधी को लें, मीराबाई को लें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लें, उन्होंने ये संस्कार बचपन से किसने डाले? मां बाप में। मां बाप में अगर संस्कार होंगे तो वो संस्कार बच्चों में आएंगे। यहां पर पहले मां बाप को सिखाया जाता है और मां बाप के आचरण से बच्चों में वो संस्कार आते हैं। और विशेष यहां हर वर्ष 8 दिन, 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों का स्पेशल कैंप लगता है, जहां उनमें सभी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज उन्हों को हर प्रकार की सिखाई जाती हैं। आज अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपका बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, दोपहर को आता है, खाना खा करके चल बेटा ट्यूशन पर, ट्यूशन से आता है, होमवर्क करता है, खा करके सो जाता है, आप उस बच्चे के साथ कितना समय बैठ करके आपने वो माँ का वात्सल्य, माँ की हूफ, माँ की पालना, वो आपका बेटा है और उसका आपसे अटैचमेंट है, बेटा स्कूल में क्या सीखा, ट्यूशन में आज क्या हुआ, मैंने कभी उस बच्चे को पूछा? और सुबह उठा, जल्दी जल्दी उसको उठाया, चलो देर हो रही है, उठो उठो जल्दी तैयार करो, ये लो नाश्ता, बैग पकड़ाया और जाओ। क्या ये मेरा उस बच्चे के साथ वैल्यू बेस्ड बिहेवियर है? यहां थर्ड आई ऑफ ओपनिंग चाहिए, यहां स्पिरिचुअलिटी चाहिए कि हम किस प्रकार के संस्कारों वाला व्यक्तित्व चाहते हैं, घर का वातावरण हम किस प्रकार का चाहते हैं। चलो स्कूल से आओ, होमवर्क करो, खाना खाओ, ट्यूशन पर जाओ, ये करो वो करो, हमारा स्वभाव और बोल ऑर्डरली हो गया है, वो एक प्यार का, एक इमोशनल, एक वात्सल्य वाला, एक माँ की ममता वाला स्वरूप आज जब मेरे में नहीं है, तो बच्चों में बचपन के वही संस्कार बड़े होकर के आएंगे और फिर वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी कर लीजिए।
मैंने कहा कि एक जो पहले दो लोग बोल के गए थे उनका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि बच्चे, जी आप कुछ कहना चाहते
हैं? एक बात कहूँ यहाँ पे, आपको मालूम है कि आजकल कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते, शाम में जब स्कूल से आते हैं टीवी के सामने बिठा देते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है, वर्किंग मदर्स हैं, तो टाइम नहीं है बच्चों को टीवी के सामने बिठा के। अभी वो बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है, यानी बात नहीं कर सकते, ऐसे टीवी के सामने बैठते हैं, बात नहीं बोल सकते, ऑटिज्म है, इसको वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, ऐसे भी हो रहा है, दे नॉट एबल टू कम्युनिकेट, एक बात भी नहीं बोल सक रहे हैं, फिर क्या फायदा बच्चा होने के।
ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग यहां आए हैं, जैसे उन्होंने, उनका जवाब मैं, मेरे को लगता है मुझे देना चाहिए। हम बचपन में बच्चों की संभाल करते हैं, बहुत संभाल करते हैं, कहते हैं कि अभी बच्चा, इसका जरा ध्यान रखो, और जब बड़ा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बचपन में हम दारू नहीं पियेंगे, शराब नहीं पियेंगे, उल्टा सीधा नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे किसी का प्रो, और बड़ा होने के बाद हम सब कुछ करते हैं। तो बड़ा होना ठीक है या बच्चे ही रहना ठीक है, आप सोचिए। अच्छा पूछो तो कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी के साथ तो चलना पड़ता। तो बचपन में आप बचाते हैं, माना जब बच्चे होते हैं तो उसको हम परहेज करते हैं, और बड़े होने के बाद लाइसेंस ले लेते हैं करने का। ये तो आप समझिए ना कि बड़े होने के बाद हम सोसाइटी में जाने लगते हैं, कर लेते कि नहीं हमें सोसाइटी में रहना है, और वो जिस अवगुण से हम बचपन में बचाते हैं, बड़े होने के बाद वो अवगुण हम बतौर लाइसेंस समाज में, सोसाइटी में रहने का हम धारण कर लेते हैं। आज कितनी हमारी बुद्धि बदल गई। बहनें हमारी कहती हैं, ब्रह्मा कुमारी जी की फिलोसॉफी है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग दोस्त उसी तरीके का प्रभाव पड़ता है। आजकल हम लोग कमाने के चक्कर में, मैडम कह रहे थे कि जब हम कमाने के चक्कर में हम बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते हैं। अब आपने कभी सोचा कि जिस बच्चे की मेड बच्चे को पालती है उस बच्चे के अंदर क्या संस्कार भरेगा? वो मेड कभी नहीं सोच के ये पालेगी कि ये बच्चा अच्छा संस्कार बने, वो पैसे के लिए पालती है। तो बच्चे के जीवन में आप बचपन से पैसा डाल रहे हैं और आप कॉमर्शलिटी डाल रहे हैं। जो बच्चा अपनी माँ की गोद में नहीं बैठा, जो उसकी उसके वाइब्रेशन को फील नहीं किया, वही बच्चे आगे चल करके वो कहते हैं कि अनाथालय में माँ बाप से कोई रीत नहीं है। और हम पैसा कमाने के चक्कर में हमने दौलत तो खड़ी की, लेकिन बच्चे की जो दौलत हमें देनी चाहिए वो दौलत से दूर हो गए, और लास्ट में पता पड़ता है कि हम तो सबसे खाली हो गए, बच्चों से भी खाली हो गए और दौलत से भी खाली हो गए। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी बाड़ी, जैसा संग वैसा रंग, ये ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी, आप लोग जो यहाँ भोजन कर रहे होंगे, ये भोजन हमारे यहाँ कोई मेड नहीं बनाता है। हमारे यहाँ बहनें और भाई जो समर्पित हैं, सुबह सुबह उठ के परमात्मा की ध्यान में भोजन बनाते हैं। वही दाल चावल आप होटल पे खा के आइए और वही दाल चावल आप यहाँ खा रहे हैं, आपको प्रसाद लग रहा है, क्योंकि भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन प्रसाद है। और जब हर बच्चा, हर घर का व्यक्ति अगर प्रसाद खाएगा, आपके आप अगर भोजन बनाएंगे बाबा की याद में, परमात्मा की याद में, तो आपका बनाया हुआ भोजन अगर प्रसाद होगा और प्रसाद खाने वाले का मन कैसा होगा, यहां बच्चों को नहीं, यहां खुद को इसमें ढालने की जरूरत है, मैं जहां तक समझता हूं। इसमें और किसी का सवाल हो, मैं एक सवाल और पूछता हूं, मूल्य से संबंधित है। जैसे मान लो कि एक घर में देवरानी जेठानी दोनों हैं, ठीक है, दोनों के हस्बैंड नौकरी करते हैं, दोनों लोग पैसे कमाते हैं। अब किसी के पास बैंक में बैलेंस ज्यादा हो गया, किसी के पास बैंक में बैलेंस कम हो गया। देवरानी को मालूम पड़ेगी कि जेठानी पैसा ज्यादा इकट्ठा कर रही है, साथ में रह रही है, हमारा पैसा ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में आप अपने, आपकी स्थिति क्या होती है, आपको ईमानदारी से बताएं। ये सबके साथ होता होगा, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सबके साथ है, कोई इसमें अछूता नहीं है। अगर कोई अछूता है तो बता दे कि हम इससे अछूता है। ऐसे में मूल्य को कहां हम रखते हैं और मूल्य की कितनी जरूरत है, कौन इसमें बताएगा? कोई है इसमें इस बात करने वाला? कोई एक भी सोच रहे हैं कि हम बताएंगे तो लोग सोचेंगे कि इनके देवरानी जेठानी में ऐसा होता होगा, ऐसा कोई है? आप बताने आ रही हैं जी? आइए, देखिए, छोटी छोटी चीज है जो परिवार के संरचना को बांध के रखती है। ये हर किसी के साथ हैपनिंग होती है, और इस पे अगर हम छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे तो घर की शुरुआत छोटी चीजों से होती है, बड़ी चीजों से नहीं। जी,
ओम शांति। देखिए, ऐसी परिस्थिति में जो घर के बड़े होते हैं ना, जैसे हमारी माता जी हैं, वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तब जाकर के जो बच्चों के अंदर भेदभाव वाली फीलिंग है ना, वो माता पिता से स्टार्ट होती है, शुरू होती है। अगर उन्होंने उनको लेवल में ले लिया ना, तो बहुएं दूसरे घर से आई हुई वो बाद में आती है। तो पहली समझ माता पिता की काम करती है, दूसरी समझ भाइयों की काम करती है, भैया हम में कितना लेवल है, हम में कितना कोऑर्डिनेशन है, हम कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं। जैसे मेरे पति ज्यादा कमाते हैं, बड़े भाई साहब कम कमाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ होता है, ये चीज एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हम फेस करते हैं। कौन कोऑर्डिनेट करता है? माता जी कोऑर्डिनेट करती है इस चीज को। कैसे लेवल करनी है भैया? जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा खर्चेगा, आप अपने इस लेवल को और 1 लाख वाले लेवल को और 50,000 वाले लेवल को कैसे कोऑर्डिनेट करना है? तो वो वैल्यू कौन देगा? माता जी देगी। बहुओं पर तो नाम लगा दिया जाता है अक्सर कि हाँ भाई, थोड़ी सी जलन वाली फीलिंग होती है। कॉम्पिटिटर तो कॉम्पिटिटर होता है ना, कॉम्पिटिटर तो इस पर, ये कॉम्पिटिशन तीसरे लेवल पे।
भाई अगर माता जी ने तो कहा और बगल वाली ने आके फूंक के चली गई कान में आपके को, कि आप देखो कि माता जी की बातों में क्यों जाती हो, तुम्हारा तो माता जी के चक्कर में तुम्हारा रह गया, बगल वाले ने तो इतना जमा कर लिया, तो उसमें क्या करेंगे?
तीसरा है ना, पहले माता जी का है, दूसरा भाइयों का लेवल है कि अगर उनमें अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो तीसरे नंबर पे बहुओं का लेवल आता है कि वो कुछ बोले। थर्ड लेवल है नैतिकता, यही है नैतिक मूल्य, यही है कि तीसरे पे वो डिपेंड होता है। और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया ऐसी सिचुएशन क्यों होती है, सिचुएशन तभी होती है कि हमें अधिकार तो पता है पर हमें दायित्व नहीं पता। ये सिचुएशन तभी आई कि हमें अधिकार तो पता है कि भैया बराबर का खर्च करना था पर उसने बचा लिया और मैंने खर्च कर लिया, तो मुझे अधिकार तो पता है मेरा पर मेरा दायित्व नहीं पता, इसलिए ये सिचुएशन है।
थैंक यू। मैं समझता हूँ कि पुष्पा दीदी, जरा आप इन चीजों को बताइए कि ऐसी अगर स्थितियां घर परिवार में होती हैं तो वहां पे कौन से वैल्यूज को व्यक्ति को सामने रख के और इस सिचुएशन को संभालना चाहिए ताकि परिवार बना रहे और सद्भावना भी बनी रहे। ऐसी स्थितियों में किस वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए?
ऐसे में हमारा दृष्टिकोण संबंधों के प्रति क्या है, कैसा है, ये स्पिरिचुअलिटी से हम बहुत सहज समझ सकते हैं। क्योंकि हम दैहिक संबंध से ही देखते हैं और उसी से ही हम कंपैरिजन करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इसके अंदर एक्सेप्ट करने की शक्ति चाहिए कि हम स्वीकार कर सकें कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम धन को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी हमें अंदर से ताकत देती है कि हम उसको धन को भी और संबंध को भी और एक आदर्श क्या होना चाहिए उसको भी जानते हैं, तीनों ही बातों को जानते हैं। हम इग्नोरेंट नहीं है उससे। अगर एक पहलू भी इग्नोरेंट का होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो दुविधा ज्यादा होती है। मैं ऐसा समझती हूँ ऐसे कई परिवार हैं जो ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं, पहले से उनकी स्थिति कैसी भी रही हो लेकिन ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए, आजकल तो इसीलिए ज्वाइंट फैमिलीज रही ही नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूं तो मुझे अलग होना है, तो वो परिवार एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, चाहे साथ में ज्वाइंट रीति से नहीं भी रहते हैं, परंतु उसकी अहमियत को समझ जाते हैं और उस संबंध को उस दृष्टिकोण से ना देख करके कि हम परमात्मा की संतान है, आपस में एक ही है, और ये कुछ समय का खेल होता है संबंधों का, जन्म जन्म चेंज होता रहता है, इतना विशाल दृष्टि बन जाती है तो वो स्वीकार करना आसान हो जाता है। आजकल कोई स्वीकार नहीं कर पाता है, वो शक्ति नहीं है, और वो शक्ति आध्यात्मिकता से सहज आ जाती है एडजस्ट करने की।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कह रहा था कि आजकल जो ये कॉमन जो चला है सोसाइटी में कि शादी विवाह तो ऐसा हो गया जैसे कपड़े बदलने जैसा हो गया है। शाम को शादी हुई, चार दिन दस दिन के बाद पता पड़ा कि वो फाइल कर दिया केस, कोर्ट केस। क्या हो भाई, उनकी बनती नहीं है। बनती किस लिए नहीं है, क्योंकि उसको वो नहीं मानता, उसको ये नहीं मानता। अब इसमें अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति को बर्दाश्त कर लेना चाहिए या पत्नी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए? कौन? नहीं नहीं इसमें देखिए, इसमें बहुत बड़ा मूल्य है। सबसे पहले मूल्य तो दीपक तले अंधेरा। अगर हम पति पत्नी से परिवार बना है, बाद बच्चे उच्चे तो बाद की चीज है, पहले तो वहीं से शुरू हो रहा है ना जी। तो ये बताइए कि अगर किसी बात को लेकर के, अगर मान लीजिए पति पत्नी में किसी एक बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है और पति सोच रहा है कि पत्नी माने और पत्नी सोच रही है कि पति माने, तो पहल इसमें किसको करनी चाहिए? कोई एक बताए हमसे, कोई एक बताए। अरे हाथ खड़ा कीजिए, ये तो आप लोगों के साथ होता होगा ना? नहीं, कोई है इसमें? हाँ आ जाइए ये। अच्छा भाई साहब आप, हाँ अरे कमाल है आप तो, आप कमाल करेंगे आप। हाँ बताइए ना, किसको पहले करना चाहिए?
ओम शांति। मेरा ये मानना है भाई साहब, सबसे पहले मैं दो तीन बातें वैल्यू पे वक्त
ना, ना वो वैल्यू नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ।
अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका कि मैं आप बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। सब लोग किससे पूछो, ये दीदी अच्छी है, दादी अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, ठीक है। अब दूसरा अपने को ये कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, दूसरा अपने को ये कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, और जिससे अपना संबंध नहीं है, सर वहीं पर आ रहा हूं आपकी बात से, जो दूसरा कहे कि जो जिसको जानता नहीं हूं लेकिन उसने मेरा काम देखा, वो मेरे को कहे बहुत अच्छा है, जब ये चीज आ जाएगी तो वैल्यू बराबर हो जाएगी सर। तो वैल्यू पता चलेगी इंसान को कि वास्तव में वैल्यू क्या है, उस इंसान में क्या काबिलियत है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं सर मैं कि देखो, जिसकी तेज आवाज हो ना सर, जिसकी धीमे आवाज हो, धीमे आवाज वाले को चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मूल मंत्र है।
आपने छेड़ दिया है। आओ जी आप आ जाओ आप तो। हाँ बताओ, अगर 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 इनकी धीमी आवाज, अगर आपकी तेज आवाज, तो क्या करेंगे आप बताओ जरा। हाँ माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए।
भाई जी मैं बिहार के हूँ, थोड़ा सा मेरे भाषा आवाज घुमा हुआ। मैं
माइक लगा लीजिए, माइक जो
मैं जानना चाहती हूँ कि मूल्य यानी क्या है। जो मूल्य वो चीज होती है जो जीवन को, इंसान के जीवन के बेहतर बना दे, सरल बना दे, सुचारू रूप से चले उसकी जीवन, मूल्य वो होता है जो हमारे हल्का हमको कर दे जीवन में। मूल्य कोई बाजार आज के तारीख में बाजार से खरीद के नहीं ला सकते हैं।
सवाल उसका नहीं है।
नहीं भाई जी, मूल जो है हमको हमारे परिवार से मिलता था, हमारे पड़ोसी से मिलता था, हमारे शिक्षा से स्कूल में मिलता था।
मैं तो ये फिर पूछ रहा हूँ, अगर आपका हस्बैंड अगर 5 दिन रात को बिना बताए खाना नहीं खाते हैं,
हाँ,
और रोज आपका खाना फेंका जाता है,
हाँ,
और फिर 6वें दिन आप कहती हैं, फिर 7वें 8वें दिन ऐसे, तो आप वहाँ क्या करती है? वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे में क्या करेंगे आप? और उसमें भी आके आपको डांटते हैं, हाँ, तो आपको चुप होना चाहिए, उनको चुप होना चाहिए भाई। बोल
जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि उनको उस समझा करके उनको अपने
नहीं समझ रहे हो
ऐसे नहीं समझेगा तो फिर मूल रही नहीं गया है, मूल फिर रही नहीं गया है।
अरे और कोई
मूल तो और... है ना, मूल कोई ऐसा चीज नहीं है। अगर मूल हमारे को मिल जाता है,
एक ही कहानी मैंने बताया, वो जहर देने वाली,
हाँ,
वो तो, एक ही कहानी है, वो जहर देने वाली।
तो अगर मूल होता, मूल समाज में होता, तो वो पति को जहर क्यों देती?
अरे ये तो होने ना होने की बात ही हो रही है ना, बट ये तो हैपनिंग जो रही, उस पे मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपके हस्बैंड जो है 5 दिन लगातार बिना बताए रात को नहीं आते हैं, लेट आते हैं, और खाना आप फेंक रहे हैं, फिर 6वें दिन आप बता रहे हैं, फिर 7वें दिन आके आपके ऊपर बरस रहे हैं कि तुम कमाती हो क्या, फिर आप क्या करेंगे? वो मैं कह रहा हूँ।
नहीं तो इसके समस्या के ये मूलवान समाज में ऐसा नहीं होता है।
अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगी, कैसे समझाएंगी, डंडा से या कैसे?
नहीं, अगर वो नहीं समझते हैं तो अपने जीवन को अलग अलग करके अपना आराम से चलाइए। आपको उनको जहर देने की क्या जरूरत है? किसी की जिंदगी लेने की क्या जरूरत है?
एक सेकंड, अब आपने कह ही दिया है तो बात दूर तक जाएगी अगर निकली है। आप बता दीजिए, इससे आप सहमत हैं क्या? शशि जी आप बता दीजिए, आप सहमत हैं क्या इससे? रास्ता अलग अलग कर लेना चाहिए क्या?
एक के मूल है और एक के नहीं है, यहाँ पे बैलेंस की बात आती है।
आपका हो गया, आप जाइए, दूसरे लोग खड़े हैं, आपका सवाल हो गया, आप दूसरे पीछे खड़े हैं।
मतलब थोड़ा सीरियस नोट पे लेंगे, एक्चुअल क्या होता है?
आप इससे सहमत हैं क्या? मैं हाँ ना में पूछ रहा हूँ।
नहीं, अगर वो
माना पास, मैं उनसे कहना है, 5 दिन वो बिना बताए रात को नहीं आए, खाना फेंका जा रहा, 6वें दिन समझाई, 7वें दिन आके वो गर्म हो गए कि पैसा तुम कमाती हो क्या, तो कह रही है कि अलग अलग हो जाना चाहिए, आप इससे सहमत है हाँ या ना?
देखिए इतनी जल्दी डिसीजन क्या होता है? अगर मतलब इसमें आध्यात्मिकता का बहुत एक वो है कि अगर महिला की मूल है और एक में नहीं है, यहाँ मैं यही कह रही हूँ, सिचुएशन को ले रही हूँ कि अगर समझाने से, बात करने से एक कोशिश करनी पड़ेगी, ये नहीं कि उठ के और कर दिया कि भाई आप जाओ, हम वो जाओ, अगले दिन ये डिसीजन।
मतलब आप सहमत नहीं है ना, आप सहमत नहीं है ना इसी से, उनकी बातों से? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हाँ नाम जवाब दीजिए ना।
नहीं, एकदम डिसीजन
तो आप भी अपने को बचाइए, बस बता तो दीजिए, आप उनसे झगड़ने की चक्कर थोड़ी है। अभी अभी सेफ मोड में बोल रहे हैं आप। मैडम आप बताइए, आप तो पढ़ाती हैं, आपका आंसर क्या होगा? एक सेकंड में, हाँ या ना?
ना, ना है
ना। ना से कितने लोग सहमत है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकी जो लोग हाँ वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। आप क्या करेंगी जो हाँ वाली हैं, बताइए जरा, क्या करेंगी आप? रास्ता अपनाएंगी या डंडा से समझाएंगी?
आई थिंक यहाँ पे काउंसलर की जरूरत है,
काउंसलर की जरूरत है। जी देखिए, सारा कुछ वैल्यू से जुड़ा हुआ है, सब कुछ वैल्यू से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और ये हर किसी के साथ होता है,
बिल्कुल होता है सर।
हाँ, तो क्या करेंगे आप?
5 दिन वो खाना नहीं खा रहे हैं घर में,
हाँ,
तो 6वें दिन आप पूछ के बनाएंगे कि हाँ, खाना बना दूं मैं,
हाँ,
वो कहेंगे जो भी उनका फोन, एक फोन कॉल की जरूरत है सर, बस ठीक है।
फोन नहीं उठाया उन्होंने,
नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, आप खाना मत बनाइए,
ओके
ठीक है। और अगर आपने बोला पैसा मैं कमा रहा हूँ, तो जब आप खाना नहीं बनाएंगे तो वो ये भी नहीं बोल सकते कि आप पैसा बर्बाद, आप ये बोल सकते कि देखिए मैं 5 दिन से खाना फेंक रही हूँ या वेस्ट जा रहा है, तो आपका ही पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मैं वैल्यू देती हूँ उस चीज को कि आप कमा के लाते हैं, और वो चीज क्योंकि गृहिणी जो होती है सर, किचन की बात है ना जैसे,
बहुत बढ़िया।
तो एक्चुअल में एक कॉल तो सर उठा ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे समझ, वो खुद से ना नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे कि क्या करूं, हो सकता है छठे दिन उनको भूखा सोना पड़े, है ना।
ठीक है, तो कितने लोग भूखा सुला के समझाएंगे भाई, कितने लोग उनको भूखा सुला के समझाने की कोशिश करेंगे, हाथ खड़ा करें। अब बाकी लोग
सर पांच दिन का खाना वेस्ट करने के बाद एक दिन तो व्रत रख ही सकते हैं, है ना। मतलब सबको मिला है गिन के दाना, तो एक दिन वो व्रत रखेंगे तो शायद बैलेंस हो जाएगा कि पांच दिन का खाना।
हाँ, मैंने कह दीजिए कि हम इसलिए नहीं बनाए कि हम व्रत थे, आपने कुछ मैसेज नहीं दिया इसलिए हम नहीं बनाए, आप सो जाओ अभी व्रत रहो, ऐसा तो कह दे। व्रत पे तो नहीं गुस्सा करेंगे ना?
नहीं करेंगे सर, खाली पेट पे क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो सातवें और आठवें महीना भर तो डिवोर्स में भी लगेगा सर, बट महीना भर कहाँ जाएंगे बिना खाए। डिवोर्स सातवें दिन नहीं होगा, आठवें दिन भी नहीं होगा, बट महीना भर साल भर लगेगा। अगर आप डिवोर्स की बात करें कि अलग हो जाना है तो साल भर तो झेलना है ना एक दूसरे को, फिर तो सातवें दिन हो सकता है उनको समझ आए कि मुझे बता देना चाहिए। और ये कॉल वाली बात, हाँ बता देना चाहिए, क्योंकि लड़ना सोल्यूशन नहीं है। लड़ लड़के आप क्या करेंगे, आप खाना बनाना बंद कर देंगे सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, फिर वो खुद ही बताएंगे आज मेरा खाना बना दीजिए या फिर मैं आज बाहर से खा के आऊंगा।
ठीक है, थैंक यू। हमारी दीदिया जो है ना, दीदिया देख रहे हैं आप, हम लोग इनके सगे परिवार के नहीं है, और जो माँ बाप ने संस्कार हमको नहीं दिए ना, वो इन दीदियों ने और इनकी मुस्कुराहट ने और इनके सफेद वस्त्रों ने और इनकी त्याग तपस्या ने हमारे जीवन में वो संस्कार दिए। अगर ये कह देती हैं कि तुमको धूप में खड़ा रहना है, तो हमारा एक सेकंड ईगो नहीं आता कि ये कह के क्यों कह दे कि तुमको धूप में खड़ा रहना, क्योंकि यत्र नरस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। नारी तो एक शक्ति है, ये जो सफेद वस्त्र देख रहे हैं, सफेद वस्त्र एक जिंदगी है, सफेद वस्त्र एक रोशनी है, सफेद वस्त्र एक उम्मीद की किरण है, सफेद वस्त्र एक गीता है, सफेद वस्त्र रामायण है, सफेद वस्त्र महाभारत है। ये जब हमारे भाव आ जाएगा ना, तो ये जो दीदियां हमारा जो बताती हैं, जो आज हमारे, मैं आपको बता दूं कि घर में चार आप लोग रहती होंगी, सास देवरानी जतानी की झगड़ा होते होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 46,000 बहनें हैं। कितनी है? 46,000। और पूरे दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं, और हमारे यहाँ मालिकाना हक इन्हीं के नाम है। हम एक बार नहीं कहते कि आप मालिक क्यों हो, क्योंकि भगवान ने इनके अंदर, आपके अंदर एक ऐसी ताकत दी है जिस ताकत के बदौलत राम के पहले सीता का नाम आता है, जिस ताकत की बदौलत कृष्ण के पहले राधा का नाम आता है, जिस ताकत के बदौलत नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम आता है। वो डंडा से मार के समझा के थोड़ी उनका नाम पहले आ रहा होगा, उस शक्ति की वजह से आ रहा होगा ना। अब मैं इस पे कहता हूं कि पुष्पा दीदी को, दीदी आप बताइए कि आदमी लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, अच्छा आप बोलना चाह रही हैं जी, बताइए।
वैल्यू के ऊपर अगर पांचवें दिन तक हस्बैंड नहीं खाते हैं,
हाँ हाँ, अच्छा अभी चर्चा चली रही,
तो छठे दिन हम खाना नहीं बनाएंगे।
देखो और उस दिन भूखे आ गए,
वो आए तो ठीक है कोई बात, अगर हमसे पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं बनाया, हम उन्हें यही बोलेंगे कि देखिए आप बहुत मेहनत करते हो, हम पांच दिन से खाना बर्बाद जा रही है, हमें आपकी मेहनत की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है।
वो बोलेंगे हमें तो भूख लगी है, तुम खाना क्यों नहीं बनाई, रात हो गई 12 बज गया,
आपने हमें बताया नहीं, अगर आप, मैं बनाती आप नहीं खाते तो छठे दिन का भी खाना बर्बाद जाता।
अरे भाई बट आप उनको खाली पेट तो नहीं सुलाएंगे ना, कुछ तो बना के खिलाएंगे, नींद ही नहीं आएगी उनको।
नहीं, अगर हमें अपने पति से प्यार है सचमुच, तो वो अगर कहेंगे तो मैं उस समय भी उनके लिए बना सकती हूं।
ये रहा वैल्यू, ये रहा वैल्यू, इसको यही मैं कहना चाहता था कि ये होता है मूल्य। प्यार में भी दो चीजें होती है, एक निस्वार्थ प्यार और एक स्वार्थ वाला प्यार। मैं पुष्पा दीदी से कहता हूं कि इन दोनों को आप बताइए और अध्यात्म कैसे भूमिका निभाता है वो बताइए। ये था कि अगर पांच दिन नहीं आई, वो बहन जी ने कहा कि हम खाना नहीं बनाएंगे, अब उस दिन वो भूखे आ गए, बोले भाई तुम नहीं बनाई तो पूछ तो लेती, अच्छा नहीं तो चलो बना के खिला दो। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें स्नेह होगा तो हम उनको खाना खिला के या कुछ तो खिला के सुलाएंगे, खाली पेट तो सुलाएंगे नहीं। तो हमने कहा कि स्नेह में, प्यार में भी दो चीजें हैं जिसकी वजह से आज क्राइसिस बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से एक लड़की अपने 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 बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए अपने पांच पांच भाइयों का मर्डर कर देती है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी अपनी लड़की से शादी करने के लिए अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है, क्या प्यार जो होता है, प्यार और स्नेह ये दोनों मूल्य के अंतर्गत आते हैं, तो आप स्नेह कौन सा प्यार है जो इंसान को इस्टेब्लिश करता है, परिवार को बढ़ाता है, समाज को बांधता है, संगठन को मजबूत रखता है, पारिवारिक डोर मजबूत रखता है, उस प्यार का दोनों का मतलब समझाइए, क्योंकि उन्होंने प्यार की बात कही।
वास्तव में ये जितनी भी बातें हैं कुछ सामने आई और बहुत हैं, उसके पीछे आज मानव के अंदर जो एक वैल्यू जरूरी है और वो नहीं है, क्योंकि आज स्वार्थ बढ़ गया है, सेल्फिशनेस, चाहे पुरुष है या स्त्री है या किसी भी एज ग्रुप का है, बच्चा है या बड़ा है, तो वो होने के कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है और उनके सल्यूशन ही नहीं निकलते, इवन कोर्ट तक भी नहीं निकलते हैं। एक युगल था कपल, वो काफी समय से इसी उलझन में थे कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते आपस में, हमें अलग हो जाना चाहिए। कई बातें थी उनकी, वो तो होता ही है नेचुरली, आप समझ ही सकते हैं पति पत्नी की क्या क्या आपस में नोक झोंक होती रहती है, चाहे वो मनी के हिसाब से हो, चाहे रिलेशन के, चाहे और जो भी कुछ है। वो कोर्ट गए तो कोर्ट की सिस्टम है कि पहले उनको एडजस्ट करने के लिए काफी प्रेरणा दी जाती है, समझाते हैं, जज ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे। आखिर जज ने उनकी, मैं सच्ची घटना सुना रही हूँ, आखिर जज ने उनको कहा, देखो मैं लास्ट आपको एक राय दे रहा हूँ, इसको आप जरूर मानिए, मेरी जरूर जरूर मानिए, उसने एज ए ऑर्डर उनको कहा, आपको उसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाना होगा। वो दोनों बड़े हैरान हो गए, हम बात कर रहे हैं घर की, हम बात कर रहे हैं और रिलेशन की, और ये ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। तो उसने कहा मेरा ये आपको ऑर्डर है, तब मैं बाद में सुनूंगा आपसे कि आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। तो आखिर वो उनके कहने से और यहाँ की बेसिक नॉलेज समझी, मेडिटेशन सीखा, और उन्होंने रियलाइज किया कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं और वैल्यूज क्या होती है, लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, इंटरनली हमारी फीलिंग्स क्या है। तब उनको अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, पत्नी ने भी अपनी गलतियां समझी और पति ने भी अपनी गलतियां समझी, तो दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता हमें रियलाइज कराती है कि मेरा जीवन वैल्यूएबल कैसे हो, और जब तक वैल्यूएबल नहीं है तो मैं पीसफुल नहीं हूं। और तब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, संबंध भी हम निस्वार्थ भाव से निभाते हैं तो संबंध बहुत अच्छी तरह चलते हैं, और दूसरे को भी वो प्रेरणा, उसके अंदर जागृति आती है, घर का कोई भी प्राणी है उसकी फीलिंग्स भी जागती है कि देखो माँ ने या भाई ने या पत्नी ने कैसे मेरी सेवा की है। तो वो टाइम जरूर लगता है, तुरंत नहीं। हम कई बार सोचते हैं मैंने दो बार इतना अच्छा बोल ले, अब ये तो मेरे को स्माइल भी नहीं कर रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं। और इतनी जल्दी क्यों हो गया, उसका कारण यही है क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, और वो शक्ति स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकती है और किसी भी बात से नहीं आ सकती, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद देविका। और जो चर्चा इस पे चल रही थी, तो जहां तक वैल्यूज की बात है और जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, अभी पीछे दो दिन पहले घटना हुई है हाथरस में। हाथरस में एक घटना हुई, एक बाबा के यहां समागम लगा था और भगदड़ मची और उसमें 123 लोग मरे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अध्यात्म पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि मूल्य पे तो चर्चा हो गई, अब अध्यात्म की मैं बात कर रहा हूं। अध्यात्म को हमको समझना पड़ेगा। बाबा के पास भी जो लोग गए थे, भक्ति भावना धर्म उसमें ही तो गए थे ना, दूसरा तो कोई उपाय तो था नहीं जिसकी वजह से वो गए थे। 123 लोग मरे वहां पे। आप लोग यहां पे ब्रह्मा कुमारीज में दो दिन से आए हैं, ऐसा मकान, ऐसी व्यवस्था, ऐसी बगीचे, ऐसे लोग सब जगह मिले होंगे, यहां आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन इसमें बताएगा? भाई साहब आप पहले हाथ उठा रहे हो, बहनों से आइए पहले इनका सुनिए, फिर आप लोगों से मैं पूछूं।
ओम शांति। सर मैं पहले तो बाबा का शुक्रिया गुजार करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पहले तो जो स्वर्ग तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने यहां पे स्वर्ग देख लिया।
थैंक यू।
और एक ही बात बोलूंगा कि जब से मैंने 2014 से ओम शांति ज्वाइंट किया है, मैं राजकोट गुजरात से हूं और सेंटर में जाता हूं, और तब से मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया है। आपने जो बात बोली बाबा के यहाँ भगदौड़ की, जो 123 लोग उसमें डेट हो गए,
मैं उसके लिए नहीं,
नहीं इसलिए यहाँ आप बोल रहे हैं कि आपको यहाँ क्या अनुभव हुआ, तो मेरे को तो यहाँ स्वर्ग ही दिख गया।
तो आपके घर में भी तो अच्छा ही होगा
ना? घर में ही अच्छा है, सब माहौल अच्छा है, बीबी है, बच्चे है, लेकिन बाबा के सेंटर में जाके फिर यहाँ आके जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको यहाँ आके क्या मिला,
ठीक है,
तो मेरे को यहाँ आके स्वर्ग मिला।
और कोई, हाँ यहाँ क्या अच्छा, आप तो एक बार साथ बोल चुकी है ना, कोई नया बोले, क्या अच्छा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है स्वर्ग, ठीक है, मतलब बेसिकली चीज कौन सी जो अच्छी लग रही है आपको, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ी हुई इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत सही तरीके से समझ सके कि अध्यात्म क्या है।
जो हम सुबह से या कल से जो बात कर रहे हैं अविनाशी गुणों की, जो हम में गुण रहते हैं, जो जैसे हम बर्थ लेते हैं, जो गुणों की बात कर रहे हैं, तो वो शांति का और वो प्रेम का अनुभव हर जगह महसूस होता है। वो तो हम जो देते हैं वही हमको मिलता है, जो बात करते हैं तो हर जगह वही है, तो हमसे भी वही प्रेम और वही शांति का अनुभव वाइब्रेशन जाती है, तो वही सब महसूस किया, तो उसी की वजह से हम भी शांति स्वरूप बन गए।
थैंक यू। अच्छा आप भी बोलेंगे।
ओम शांति। यहाँ आके हमको ऐसा महसूस, दो तीन बार आए हैं, हम पहली बार नहीं आए, नीचे भी हमने कई शिविरें की है, तो जो आत्मीयता है, हम तो आपको नहीं पहचानते, आप हमें इतना नहीं पहचानते, पर हर जगह पर, खाने की जगह हो या रहने की जगह हो, सभी जगह हमको अपने जैसा लोग लगे कि अपने फैमिली में रहते हैं जैसे, ऐसा लगा, आत्मीयता बहुत लगी, क्योंकि हम तो बहुत गुजरात पोरबंदर से आए हैं, तो यहाँ सभी लोग जो है कई कई राज्यों से आए हैं, पर जो यहाँ के लोग है, यहाँ के बहन है, सेवादारी है, सब लोग इतने मेहनत करते हैं, 3 बजे से उठ के रात 10 बजे 12 बजे तक काम करते हैं, पर फिर भी हमको मार्ग दिखाना है, हमारे टीचर है वो नहीं आ सकी, हम अकेले थे, तो यहाँ आए तो हमें कोई भी कष्ट नहीं हुआ, कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, तो आत्मीयता जो है हमारे फैमिली में है, वही हमने यहाँ महसूस।
बहुत अच्छा,
थैंक यू। ओम शांति।
इन्होंने कहा कि आत्मीयता है, आप समझ रहे हैं शब्द को, आत्मीयता है। आपके ही घर में अगर मान लो आप ज्ञान में नहीं है और कोई रिश्तेदार आ गया, 4 दिन खाना खा रहा है, 5वां दिन बोला जाऊंगा, 6 दिन 7 दिन हो गया, फिर मन में सोचेगा जाएगा कब, यहां पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, और उसने अगर डिमांड कर दी कि सुबह सब्जी नहीं है बहन जी, शाम को सब्जी बना, तो फिर और मन में आ जाएगा, ये तो गजब है, 5 दिन के बजाय 7 दिन पड़ा हुआ, जा ही नहीं रहा यहां से। आत्मीयता जो वर्ड है, मैं शारदा दीदी से कहता हूं कि अध्यात्म और आत्मीयता, अध्यात्म से आत्मीयता कैसे आती है, जो हर परिवार में जरूरी है, मैं आपसे आग्रह करता हूं दीदी कि आप जो है अध्यात्म से आत्मीयता कैसे आएगी, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
ओम शांति। शुरू से लेकर के अध्यात्म शब्द बार बार हम सभी के बीच आ रहा है, और बार बार हम सुन रहे हैं आध्यात्मिकता अवेयरनेस देती है, रियलाइजेशन कराती है। रियलाइज मीन्स रियल आई, वास्तव में हम किस नेत्र से देख रहे हैं, आर्टिफिशियल आंखों से देख रहे हैं या रियल आई से देख रहे हैं। वो रियल आई हमें आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है, क्योंकि आज हम दुनिया में क्या देखते हैं, किस रूप से देखते हैं, जो चीज जो है जैसी है उस रूप में नहीं देखती हूं, लेकिन मैं जो हूं मैं अपनी दृष्टि से उसको देखती हूं, जो मेरे मन का विचार है उस दृष्टि से मैं उस चीज को देखती हूं, रियल मैं उसको नहीं समझ रही हूं कि रियलिटी क्या है। आज अगर प्रैक्टिकल में देखें तो इंसान मानव खुद ही आर्टिफिशियल हो गया है, और अब अभी तो AI शुरू हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने और भी हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को और संबंधों को भी आर्टिफिशियल बना दिया है। आध्यात्मिकता से मतलब कोई धर्म, जाति, रंग, भेद से नहीं है, वो इन सभी से ऊपर उठा हुआ है, जो अपने अंदर की आत्मिक शक्ति क्या है, आत्मा क्या है, उसको रियली रियलाइज कराती है, जो आपने आज सुबह का सेशन हु एम आई, अपनी आई को मैंने रियलाइज किया तो सबके प्रति मेरी आत्मिक और आत्मिक एक आत्मीयता, एक पारिवारिक फीलिंग, कोई मेरे लिए पराया नहीं है, ये सब अपने परिवार के हैं, अपने ही भाई बहन हैं, जिसकी आप सभी दो दिन से अनुभूति कर रहे हैं कि अपनापन लग रहा है। तो वास्तव में ये अध्यात्म है। और दूसरा क्या था? आत्मीयता। जहां आत्मीयता है उस आत्मीयता कहां है? जहां संबंध है, जहां समधुरता है, वहां आत्मीयता दिखाई देती है, अनुभव में आती है। अगर संबंधों में आत्मीयता नहीं है, अपनापन नहीं है, तो वहां हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो एटीट्यूड है, संबंधों में जो सामंजस्य, जो हार्मनी होना चाहिए, वो फिर दिखाई नहीं देती। अपने होते हुए भी वो हमको पराए लगने लगते हैं, क्योंकि आत्मीयता, अपनापन, आत्मिक दृष्टि और पवित्र दृष्टि नहीं है। और आत्मीयता में प्यार जो निस्वार्थ है, निस्वार्थ है, वो पनपता है। ऑप्शन
मैंने कहा कि आत्मीयता तो आप समझ ले, इसमें से कितने ऐसे हैं जो जब वो किसी से दोस्त है। जी हाँ,
मैं थोड़ा सा इसमें ये करना चाह रही हूँ कि सिचुएशन, जो परिस्थिति होती है उस पे बॉन्ड होता है, क्योंकि अगर तुम्हारी स्थिति बहुत लो है तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन होता है, मतलब जैसे रिस्पॉन्स नहीं होता, रिएक्शन इमीडिएटली, अगर मतलब किसी ने किया इमीडिएट रिएक्शन वो गलत हो ऑब्वियसली होता है। बट परिस्थिति को और अपनी स्थिति को आत्मिकता से अच्छी है तो परिस्थिति तो नीचे हो जाती, तो स्थिति को ऊपर ऊंचा करने के लिए आई थिंक आत्मिकता जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को समय है उस वक्त शांत होके फिर सोचना और रिस्पॉन्ड करना।
इसमें किसी का और कोई सवाल है क्या? मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों के सवाल इसमें हैं, जो जिसके प्रैक्टिकल जीवन से जुड़े हुए हैं, पूछना चाहते हैं, तो कोई है और किसी का सवाल? मैं तो फिर मैं बात करूंगा। किसी के सवाल है या सबके समाधान हो चुके हैं? आपके सवाल हैं? आइए आइए आइए। पूरा किताब खोल के ला रहे हैं, उसमें से बताएंगे। चालू है।
ओम शांति। सब लोगों को ओम शांति। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब जब यहाँ पे आए, मैं आई तो रीस राग द्वेष रीसा सब बंद हो गए। जब जब घर में होते हो हम लोग, और वहाँ भी हम प्रयास करते हैं सबको प्यार दे, सबको आत्मीयता दे, सबको प्यार से खुशी बांटो, लेकिन घर में ऐसा माहौल नहीं होते। हम ऐसा लगता है सासू माँ ऐसे होती तो शायद, हस्बैंड ऐसा करते तो शायद, बच्चे लोग हमारे कूड़ा भूसते समझ लेते तो शायद, हम सबको दोष देते हैं और हम सही पैसा छानते हैं अपने आप को। ऐसा क्यों होता है शारदा दीदी? मेरा क्वेश्चन आपके साथ है। धन्यवाद।
दीवारें, घर का वातावरण, आज हम यहाँ हैं, आप कहती हैं ये आश्रम है, क्या ये आश्रम दीवारें हैं? मंदिर में जाते हैं कहते हैं ये मंदिर है, क्या मंदिर दीवारें हैं? गृहस्थ को कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, लेकिन सब क्या कहते हैं, ये गृहस्थ एक जंजाल है। सोच क्या है? गृहस्थ जंजाल है और बंधन है। आज इसी स्थान पर एक गृहस्थी परिवार आकर के रहे, तब आप इसको आश्रम कहेंगे? कहेंगे यस और नो? जी, कल एक गृहस्थी परिवार इसी स्थान पर आकर रहे, आप इसको आश्रम कहेंगे? जो कहते हैं हाँ कहेंगे हाथ उठाइए, जो कहते हैं नहीं कहेंगे हाथ उठाइए। किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे हैं।
समझ में नहीं आ रहा है या
जानबूझ के चुप है? या नहीं
जानबूझ के चुप तो नहीं है कि दोनों में सब कुछ भी नहीं बोलेंगे,
या न्यूट्रल हो गए हैं? आज आप यहाँ हैं तो आप कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए हैं, कहते हैं, कह रहे हैं। आज यहाँ से ये सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें चली जाएं और एक बहुत बड़ा परिवार गृहस्थी लोग जिसमें 50-60 मेंबर्स हैं वो यहाँ आकर के रहें, तो फिर आप इसको आश्रम कहेंगे? नहीं। क्यों? दीवारें वही हैं, स्थान वही है, पेड़ पौधे वही हैं, सिर्फ मनुष्यों का अंतर है। तो आश्रम किस आधार पर बना? मनुष्यों के स्वभाव, संस्कार, उनकी धारणाएं, उनके जीवन के मूल्य, उनकी पवित्रता के आधार पर। आपने कहा यहाँ हमको बहुत शांति, प्रेम, सुख, आनंद का अनुभव, ईर्ष्या द्वेष तो जैसे कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कभी थे ही नहीं हमारे में, लेकिन घर का वातावरण भी ऐसा बन जाए तो कितना अच्छा है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हम स्वयं को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपके विचार सब बदल जाएंगे, आपको घर में भी वही वातावरण महसूस होगा। एक शाम के समय में आप एक अगरबत्ती जला दीजिए, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, साइलेंस में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों बच्चे बाहर से दौड़ते दौड़ते आवाज करते करते आते हैं, मम्मी मम्मी, और मम्मी को देखा, मम्मी साइलेंस में मेडिटेशन में बैठी है, बच्चों को ब्रेक लग जाएगी, मम्मी मेडिटेशन करती आवाज नहीं करो, किसका प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा? आप प्रैक्टिकल कीजिए, आपका घर का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? आप इस तरह से और समझ लीजिए, जब आप किसी के यहाँ शादी विवाह में जाते हैं तो वहां पे सामान्य तौर पे क्या देखते हैं, उसने कपड़ा कैसा पहना है, उसने मेकअप कितना अच्छा किया है, वहाँ डिजाइन कितनी है। और जब वही आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या दिखते हैं आप, प्रैक्टिकल बताना, उसमें ज्यादा किसी को मिलावट की जरूरत नहीं। वहां जाने के बाद आपको बस प्रार्थना ध्यान अपनी परमात्मा की याद और ज्ञान ध्यान समझ में आता है। व्यक्ति से माहौल बनता है। आप पानी से जब नहाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे ठंडा लग रहा है, या पानी कहता है कि मैं तुमको ठंडा लगा दूंगा। पानी का स्वभाव ठंडा करना है। तो यहां की जो हवा है, हवा में निस्वार्थ प्रेम, आत्मीय प्यार, सद्भावना, पवित्रता, वो सब घुली हुई है। तो जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ के भाग जाता है। जैसे आप घर में दीपक जलाओ और अंधेरा भागता है, वैसे ही ये परिवेश में जब आप प्रवेश करते हैं तो इन सारी चीजों का माहौल है। तो आपके भी घर में आपको क्या बनना है, दीपक बनना है। क्या बनना है आपको? और वो दीपक जो घी डालेगा ना, जिसके दीपक जलेंगे, तो ये सफेद ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास आप जाना, ये आपको दिया जलाने का तरीका बता देंगे, और आपके अंदर जो दिया जलेगा उससे पूरा परिवार घर रोशन होगा, जहां ऐसा ही माहौल मिलेगा। ठीक है, जिसके लिए पहले कहते थे गृहस्थ आश्रम, घर में परिवार में लोग होते थे लेकिन आश्रम जैसा माहौल होता था, क्योंकि लोगों के मन में शांति प्रेम और अपनापन होता था। वो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दिया जाता है, और ये फ्री फंड में है, पैसा वैसा नहीं लगना है आपको, फिर थोड़ा सा टाइम देना है। तो आप अपने घर के लिए दीपक बनेंगे या नहीं बनेंगे? कितने लोग अपने घर के लिए दीपक बनेंगे, हाथ उठाएं। वाह, ताली बजाइए भाई, ये तो कमाल होगी। तो आप लोग सेंटर पे जाएंगे ना, वहां जो दीदियां लेके आई हैं, जहां से आए हैं, वहां जाके 5-6 दिन आप मेडिटेशन कोर्स करना। और किसी का सवाल कोई? जी आइए। आप पहले एक बार पूछ चुकी हैं क्या? मैं दोबारा सवाल है ना आपका? हाँ,
हम अभी मूल्यों की बात कर रहे थे और बच्चों के संस्कारों की बात कर रहे थे, तो आपने बोला था कि
कौन से बात कर रहे थे,
मूल्यों की और हाँ, बच्चों के संस्कारों की। तो आपने बोला था कि सोशल लाइफ की वजह से हम बच्चों को बचपन में सिखाते हैं और लाइसेंस बाद में देते हैं, तो ये सोशल अवेयरनेस या सोशल इन्फ्लुएंस बोल दो, या फिर पीयर प्रेशर। जैसे दोपहर में अपने डॉक्टर ने भी बताया था कि एक बच्ची ऐसे ऐसे पिल्स लेके आई थी पीयर प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर या सोशल इन्फ्लुएंस वगैरह। तो जैसे हम बोलते हैं कि मिट्टी को जितना पकड़ो रेत हाथ से फिसल जाती है, वैसे बच्चे एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर माँ बाप से छुपाने लग जाते हैं, क्योंकि वो डांटेंगे, वो बोलेंगे कि ऐसा मत करो। तो इस केस में हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये अच्छा नहीं करना है?
बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? डॉक्टर साहब आप लोग देंगे क्या? आप सवाल का जवाब देंगे? वो बता रही है कि बच्चे एक समय के बाद छुपाने लगते हैं। आप तो पढ़ाती है ना बच्चों को, तो इसलिए आपको शायद।
तो इसमें पेरेंट्स को एक फ्रेंड का रोल करना पड़ता है, फ्रेंड्स यू नो, जिसको जिससे बच्चे बात कर सकते हैं, यू नो, शेयर कर सकते हैं जो भी उनका प्रॉब्लम्स है। तो पहले से ही अगर वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, वो विश्वास बिल्ड कर सकते हैं, तो बच्चे आके शेयर करेंगे। लेकिन पीयर प्रेशर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफैक्ट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय पीयर प्रेशर। सो आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा और एक बड़ा रोल लेना है, यू नो, एक्सटेंडेड रोल ऑफ अ फ्रेंड। अगर डांट पड़ने वाली है तो नो शेयर नहीं करेंगे बच्चे। पेरेंट्स अगर कभी भी डांटेंगे तो बच्चे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इफ यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो एक्सेप्टिंग और जजमेंटल नहीं है, तो चिल्ड्रन विल स्टार्ट कन्फाइडिंग इन यू एंड शेयरिंग थिंग्स विद यू। तो दूसरी पर्सपेक्टिव से देखना है पेरेंट्स को। कभी भी पेरेंट्स यू नो वी थिंक दैट उनको कभी भी डांटना है, यू नो वी नेवर अप्रिशिएट देम मीन वी ऑलवेज स्कोल्डिंग देम. वो डांटना कम करके ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड बी अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह बिहेव करें, तो चिल्ड्रन विल कम एंड यू नो शेयर थिंग्स विद यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
आचार्य शारदा जी कुछ बताना चाहिए.
बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात है. ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर फादर ब्रह्मा बाबा अपनी पास्ट लाइफ में ज्वेलर थे, डायमंड का बिजनेस था. एक बार कुछ डायमंड शॉप पर अपने शोकेस में रखे हुए थे, घर के बच्चे खेलते खेलते शॉप पर गए और देखा शोकेस में बहुत सारे डायमंड्स पड़े हुए हैं. तो बच्चे तीन चार थे, सब डायमंड्स उठा करके चले गए और एक एक बच्चों ने पुड़िया बना करके किसने कबाट के ऊपर रख दी, किसी ने अंदर रख दी, किसी ने कपड़ों में छुपा ली. और जब दादा लेखराज दुकान पर आए, उन्होंने देखा शोकेस में डायमंड्स नहीं है. मैनेजर था, उसको भी उन्होंने पूछा नहीं, सिर्फ इतना पूछा दुकान पर बच्चे आए थे, तो बोला हाँ. दादा लेखराज वापस गए और बच्चों से पूछा आपको क्या चाहिए. एक ने कहा मुझे रिंग चाहिए, एक ने कहा मुझे टॉप्स चाहिए, एक ने कहा मुझे नेकलेस चाहिए. तो कहा उसके लिए तो डायमंड्स चाहिए होंगे ना. तो कहा बाबा हमारे पास में है डायमंड्स. कहाँ है? कहा वो कबाट के ऊपर रखे हैं. एक ने कहा वहां रखे हैं. तो दादा लेखराज ने कहा कि अच्छा ले आओ, मैं तुमको बना के दे दूंगा. बच्चे फटाफट सब अपने अपने डायमंड जो लेकर के आए थे ला करके बाबा को दे दिए. ये ब्रह्मा बाबा के पास्ट लाइफ का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ना तो दुकान पर मैनेजर को कुछ बोला, ना बच्चों को बोला, लेकिन बहुत टैक्टफुली बच्चों से सच्चाई से सारे डायमंड्स निकलवाए. ये हमारा व्यवहार बच्चों के साथ चाहिए.
और इसमें एक और है कि आप सब लोग अपनी मन की बात किसको कहना चाहते हैं? आप अपने ईमानदारी से बताओ, आप अपने दिल की बात किसको कहना चाहते हैं? कोई बताएगा? आप बता दीजिए अपने दिल की बात आप किसको कहना चाहते हैं.
ओम शांति, साधु प्रणाम. मैं दीदी की बात से सहमत होते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ कि मैंने अपने टीनेजर बच्चे को कैसे उस बात के लिए समझा लिया. क्योंकि जब तक मैं ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आई थी, गुस्सेल थी, मार देती थी बच्चों को. लेकिन जब यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में था. एक दिन हम रिसेप्शन में कोई जा रहे थे तो बेटा मेरा तैयार होके आया, पूछता है मम्मा कैसा लग रहा हूँ. मैंने नीचे से देखा, मैंने कहा अच्छे लग रहे हो. वो बाल उड़ाए और कहता ऊपर देखो. मैंने देखा तो कुछ लाल हरा चमक रहा था उसके बालों में. मैंने कहा बेटा ये क्या है? तो उसने कहता है कैसा लग रहा है. मैंने कहा पहले ये बताओ लगाए क्या हो. कहा मम्मा जेल लगाया है. मैंने कहा ये कहाँ से आया? उसने अपने एक फ्रेंड का नाम लिया, कहा उसके पापा ने लाके उसे दिया. मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसके पापा को पसंद है, उन्होंने दिया. प्लीज बेटा तुम ऐसे जाओगे? हाँ मम्मा अच्छा तो लग रहा है. मैंने कहा प्लीज एक बार फिर आईना देखो. उस बच्चे से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो जाके आया. एक मिनट में फिर आके बोलता है मम्मा प्लीज अच्छा तो लग रहा है. 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को मैं नहीं समझ पा रही थी अब क्या बोलूं. तो मैं उस वक्त साड़ी पहन करके जस्ट यहाँ पिन लगाने वाली थी. मैंने साड़ी कमर से घुमाई और खोच ली. मैंने कहा मैं कैसी लग रही हूँ? उसने सिर हिला दिया, समझ तो हो गया था. मैंने कहा यहाँ नहीं इधर देखो, मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में ऐसे जाऊंगी तो चलेगा ना? तो उसने ना हाँ कहा ना ना कहा. विद इन 5 मिनट्स धो पोछ के वो सिर आ गया और मेरे सामने जब खड़ा हुआ मैंने उसे सिर्फ एक लाइन कही. मैंने कहा बेटा मेरी इज्जत तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी मुझसे. यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसे जाती तो कल तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बोलते कि अनिश तेरी मम्मा को क्या हुआ, कैसे ड्रेस पहन के आई थी. ठीक उसी तरह मुझे लोग कहेंगे कि माँ तो बड़ी समाज सेविका बन के सबको उपदेश देती है, अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाया तो इज्जत क्या रह जाती. नहीं मम्मा सॉरी,
आपने जो कहा मैं समझ गया। तो बच्चे को ऐसे प्यार से हैंडल कर लिया जा सकता है यदि हम यहाँ का ज्ञान खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले मैं गुस्सेल थी, अब नहीं छूती, मेरी बेटी आई हुई है, पूछ लीजिए, पहले मेरे बीमार से डरती थी, अब तो मैं जस्ट उनकी फ्रेंड हूँ। ओम शांति। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लाइफ में हमको चरित्र में धारण करना है, तब हमारे अंदर वैल्यूज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का टाइम धीरे धीरे 7:30 हम लोग पहुंच गए हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग अध्यात्म मूल्य सब समझ गए होंगे। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप लोग यहाँ ज्ञान गंगा में आए हैं तो डुबकी लगा रहे हैं, आगे भी डुबकी लगाते रहिए, नहीं तो क्या होता है कि लोग किनारे बैठ के देखते रहते हैं, एक बार डुबकी लगा के तो चले गए, कई लोग किनारे बैठ के देखते रहते हैं कि दूसरा तैर रहा है, तैरने दो। आप लोग जहां भी हैं वहां पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़िए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान अध्यात्म करे आपकी अपनी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी। आप क्या सोच सकते हैं, क्या आपको कुछ पूछना है, आइए आ जाइए। और हम लोग बिल्कुल जल्दी पूछ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है।
ओम शांति। मेरा नाम निर्मला पंडित है, आई एम फ्रॉम नेपाल। मैं पुष्पा दीदी से जानना चाहती हूँ, दीदी एक ही घर में 80 और 85 साल के वृद्ध, 15-20 साल के युवा जवान बच्चे हैं, उन दोनों को बैलेंस कैसे करना चाहिए? धन्यवाद।
बताइए भाई।
ये बात बिल्कुल ठीक है, और आजकल जनरेशन गैप की प्रॉब्लम बहुत चल भी रही है, क्योंकि बड़ा आयु का तो उसमें लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाता है, और जो बुजुर्ग हैं वो आजकल के लाइफस्टाइल को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर जो छोटे हैं वो बड़ों का नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर यही पहला सबक पढ़ाया जाता है कि किसी के भी शरीर को नहीं देखना है, किसी के भी आयु या सोच या संस्कार, यहाँ तक कि धर्म, जाति, भाषा। आजकल के बच्चे कैसी भाषा बोलते हैं बहन जी, ये भी नहीं ख्याल आता ये बड़ा है, इसको हाई नहीं कहना, हाई इक्वल एज ग्रुप में कहा जाता है, उनको तो प्रणाम कहना है। कल्चर भी आप सब समझते हैं, जब हम इस रियलिटी को समझते हैं कि मैं वास्तव में ये मेरा वर है, ये मेरा रोल है, ये मेरी एक एक्टिंग है, लेकिन करने वाली मैं कौन हूँ, वो बिंदु आत्मा हूँ। तो ये समझ देनी है, इसीलिए हम सबको देते हैं, छोटी आयु से बच्चों को लेकर के बड़ी आयु तक, यहाँ सभी स्तर के लोग आते हैं, सभी एज ग्रुप के ही नहीं बल्कि हर वर्ग के भी आते हैं, हर लेवल से आते हैं, हर रिलीजन से आते हैं। और यही सबक जब उनको समझ में आ जाता है कि ये शरीर मैं खुद नहीं हूँ, मैं बिंदी आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा का जो वो प्योरिटी है, पीस है, हैप्पीनेस है, तो इससे वो गैप धीरे धीरे खत्म हो, वो प्यार आपस का एक दो के प्रति, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, या और भी ढंग से कोई डिफरेंसेस हैं, काफी डिफरेंसेस होते हैं, नेचर के भी होते हैं, वो भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें किसी नहीं होती। और क्रिएटर परमात्मा है और उसकी हम सब क्रिएशन है, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा है, वृद्ध है, वो तो शरीर हुआ ना उसका, हम सब उसकी क्रिएशन होने के नाते उस अपने पिता से, परम पिता से वो सब शक्तियां और गुण ग्रहण करते हैं, तो ये सारी समस्याएं हल हो जाती है। आप देख ब्रह्मा कुमारी इसमें जो भी डेडिकेटेड सेवा कर रहे हैं, आप वृद्ध भी देख रहे हैं, यूथ भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, और वो सब एक और कार्य बहुत सुचारू रूप से चलता है, सहज हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसको एक सरल शब्द में समझ लीजिए कि आप जब सूर्य के सामने जाते हैं तो उसकी गर्मी महसूस होती है, आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक मेडिटेशन में आप कौन हैं, आपकी सोल की क्वालिटी क्या है, आपके असली, और वो हमारे गलत कर्मों के कारण वो खत्म हो गए हैं। तो इसको वापस जागरूक करने के लिए जब हम परमात्मा से ध्यान करते हैं तो वो सारी शक्तियां जाग जाती हैं, फिर व्यक्ति को आत्मबोध होता है कि मम्मी से कैसा व्यवहार करना है, दादा से कैसा व्यवहार करना है, दोस्तों से कैसा करना है, ये व्यक्ति के ना रहे होंगे तो उसमें बहुत प्योरिटी होगी। खाना खिलाने वाला कोई ये नहीं मुश्किल से खड़ा होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो गुण जो है, तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके जब गुण जागृत होंगे तो आपके वजह से दूसरे के गुण जागृत होंगे। ब्रह्मा कुमारी जी का ज्ञान इतना सिर्फ जो यहाँ भेजा है, आप जरूर अंक करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनचासी अतिथियों का जो आप लोगों ने इतना सुना। अगर किसी को हम प्रार्थना है क्या बता दीजिएगा। और धन्यवाद हमारी चक्रधारी दीदी का, धन्यवाद सविता दीदी का, और शारदा दीदी, पुष्पा दीदी, जो आप लोगों ने हमें और आप लोगों की बातों को मैंने इनके साथ साझा किया। अगर थोड़ी बहुत मेरे से कोई अन्याय हो गई हो तो जरूर मुझे माफ कर दीजिएगा, बट मैं कोई कोशिश मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि दो तीन भाई हैं जो सम्मानित करना चाहते हैं, चिराग भाई, शैलेश भाई, राजेंद्र भाई, हमारी दीदी शारदा दीदी, सविता दीदी का साल पहनाकर सम्मान करेंगे। मैं दीदी आपसे आ गया, और राजकोट से आप लोग आए हैं, आप साल उड़ा के सम्मान करेंगे। उसके बाद आपको 8:30 बजे यहाँ भोजन करके आना लाभ के लिए है। आप लोग कल्चरल जरूर अटेंड कीजिएगा। और इस कार्यक्रम के बाद हम अब 2 मिनट के बाद आप रुके रहिए, 2 मिनट ध्यान करके जाइएगा तो वो हुई है वो आपके जीवन में उतर जाएगी, परमात्मा की विशेष कृपा होगी। ताली बजा दीजिए आप लोग इतने देर से बैठे हैं, और आप लोगों को देखा मैंने कि आज का ज्ञान ओवरफ्लो नहीं हुआ, आप लोगों ने पूरा उसको समा लिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, अपने लिए ताली बजा। आइए हम 2 मिनट ध्यान में बैठेंगे, फिर इसके बाद भोजन पे चलेंगे, और फिर इसके बाद आपको 8:15 बजे इस हॉल में आना है। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।